And I welcome you all for today's open session, that is on the topic Woman Savior of Culture. So program ki shuruaat karne se pehle, I would like to call upon our keynote speaker, Rajyogini B.K. Geeta Didi ji, and all our other speakers also. I would like to call upon our guest of honor, Dr. Richa Rajkumar Jain ji, guest of honor, Srimati Bela Khajuria ji, Adarniya Rajyogini B.K. Mohini Didi ji, Srimati Raj Bala Singh ji, and Rajyogini B.K. Shil Didi. सभी गेस्ट अपनी स्थान ग्रहण करेंगे सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है आप सभी ताली बजा के सभी का स्वागत करेंगे Before starting the program, we would like to sit in meditation for some time. Sabhi thodi der ke liye 2 minute meditation karenge. सभी का बहुत बहुत तालियों से सभी स्वागत करेंगे और हमारी बीके सिस्टर्स जो हैं वो वेलकम करेंगी सभी हमारे गेस्ट का बाय फ्लावर्स एंड बैजेस ताली से स्वागत करेंगे आज के हमारे गेस्ट का बीके गीता दीदी जी का डॉक्टर रिचा राजकुमार जैन जी का स्वागत हो रहा है श्रीमती बेला खजूरिया जी का स्वागत हो रहा है। राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी, राजबाला संजीव और बीके शिव दीदी जी, जैसे कि हमने देखा आज का जो हमारा ओपन सेशन है वो है टॉपिक पे वुमन सेवियर ऑफ कल्चर। सो हम एक बहुत ही प्यारी पंक्तियां हैं कुछ गीत की, उससे हम शुरुआत करेंगे परमात्मा स्मृति में। तो बहुत ही प्यारा एक गीत है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे चुना है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। तो ऐसे अनमोल रत्नों का, ऐसी पावरफुल वुमन का मैं दिल से फिर से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। तो हम शुरुआत करते हैं, हमारे आज के जो की नोट स्पीकर हैं, चेयरपर्सन आदरणीय राजयोगिनी बीके गीता दीदी जी, जिनका मैं परिचय दूंगी। शी इज अ सीनियर राजयोगा टीचर शांतिवन में, और आदरणीय गीता दीदी जी जिनके नाम में ही गीता समाया हुआ है, ऐसी महान हस्ती जिन्होंने अनेकों को जीवन परिवर्तन के लिए प्रेरणाएं दी हैं। राजयोग के माध्यम से आपने ब्रह्म कुमारी संस्था की विशेष सेवाएं जन जन तक पहुंचाई हैं। आप 14 साल की उम्र में ही ब्रह्म कुमारी के संपर्क में आए। आपने विद्यार्थी जीवन में साउथ गुजरात में मैट्रिक बोर्ड में प्रथम आप रहे, और 1972 में अपने बोर्ड की परीक्षा पूर्ण कर ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय में पूर्ण रूप से समर्पित हो गए। बिजनेस और इंडस्ट्री विंग में आप मुख्यालय संयोजक हैं, टीचर्स ट्रेनिंग कराते हैं, कन्याओं को ट्रेनिंग देके आप समान टीचर्स बनाते हैं। आदरणीय दीदी जी का तालियों से बहुत बहुत स्वागत है।
ओम शांति। पिछले 3 दिनों से बहुत सुंदर विषय को लेकर के आप सभी का ये राष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा है, और जो आपका अम्ब्रेला थीम है एम्पावरिंग विमेन, उसका सॉल्यूशन राजयोग शिविर भी साथ साथ हो रही है। और ये सत्य आप सभी ने राजयोग के प्रथम सत्र में ही समझ लिया है कि हम कौन हैं। हम नारी शक्ति कहते हैं, तो नारी कौन है और शक्ति कौन है? कौन है नारी, कौन है और शक्ति कौन है? क्या जवाब देंगे? शरीर नारी है, आत्मा शक्ति है। आज सुबह भी बताया था कि शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है। हम तो स्त्री शरीर या पुरुष शरीर को धारण करने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा है। तो यहां आत्मा को एम्पावर करना है। स्पष्ट है कि आत्मा भौतिक नहीं है, अभौतिक है, अलौकिक है, चैतन्य दिव्य शक्ति है। हम आत्मा ही शरीर के ऑर्गन्स का उपयोग करते हैं। तो आत्मा अर्थात मन बुद्धि संस्कार हमें मन और बुद्धि को प्यूरिफाई करना है, एम्पावर करना है, डिविनाइज करना है और उसकी विधि है राजयोग जीवन पद्धति। राजयोग केवल क्रिया नहीं है, राजयोग जीवन पद्धति है, जीवन को श्रेष्ठ विधि से जीने की कला है जिसमें हम स्वयं चैतन्य आत्मा मन और बुद्धि के द्वारा उस परम चैतन्य शक्ति परमात्मा से कनेक्ट होते हैं और इससे श्रेष्ठ संकल्पों स्मृतियों के द्वारा हम अपने आप को एम्पावर करते हैं। राजयोग संबंधित अभी तो सिर्फ दो लेसन आपके हुए हैं, कल परसों भी एक एक लेसन होगा। वैसे पूरा राजयोग का फाउंडेशन 7 लेसन्स का है और उसमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का, कर्म की गहन गति का और धर्म के सही इतिहास का ज्ञान भी आता है। जब वो लेसन आप करेंगे तो आपको हमारी प्राचीन आदिकालीन आध्यात्मिक संस्कृति का पूर्ण ज्ञान आपको प्राप्त होगा। वैसे तो हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमें कवि इकबाल का काव्य आता था कि यूनान मिस्र रूमो सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। इस विश्व में सबसे प्राचीन भारत देश की दैवी संस्कृति रही है, और भी देशों में बाद में संस्कृति का विकास हुआ। यूनान मीन्स ग्रीस, रोम, मिश्र इजिप्त की संस्कृति, इस प्रकार से और अन्य संस्कृतियां विकसित हुई, पर समय के साथ आज उन संस्कृति का कोई नामो निशान नहीं है, कोई लाइफ में उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो नाम शेष हो गई है। पर भारत की संस्कृति जिस पर सदियों तक अनेक विधर्मियों का, विजातियों का, विदेशियों का आक्रमण होता रहा और भारत की इस संस्कृति को खत्म करने के प्रयास होते रहे, परंतु फिर भी ये संस्कृति अभी भी है और अभी भी भारत के ऐसे हजारों लोग आपको मिलेंगे जिनके अंदर ये संस्कृति के संस्कार अभी तक देखने को मिलते हैं। इसका क्या कारण है? कवि ने तो इतना कहकर छोड़ दिया, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। पर वो कौन सी बात है? वो है हमारे देश की आध्यात्मिकता। यहां केवल शरीर की दृष्टि से संस्कृति नहीं है, परंतु हमारे समग्र अस्तित्व को ध्यान में रखते हुए शरीर और आत्मा दोनों के कल्याण के संस्कार इस संस्कृति के अंदर है। ये अलग बात है कि हमारे पास हमारी दैवी संस्कृति के ऐतिहासिक उल्लेख नहीं है, परंतु हमारे पौराणिक उल्लेख जरूर है। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में इसके वर्णन मिलते हैं कि कैसे ये भारत ही स्वर्ग था, भारत में देवी देवताओं का राज्य था, इसलिए इसको दैवी संस्कृति देवभूमि कहा जाता है। जिन देवी देवताओं को चित्रों के रूप में, मूर्तियों के रूप में आज तक भी हम पूजते हैं, ये वही इसी भारत देश के निवासी थे जिस समय काल को सतयुग स्वर्ग कहा जाता है, त्रेतायुग रामराज्य जिसको कहा जाता है। तो ये संस्कृति इतनी उच्च थी जो आज हम देवी देवताओं के रूप में कितने न यादगार मंदिर बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनकी महिमा में वर्णन करते हैं कि वे सर्वगुण संपन्न थे, संपूर्ण निर्विकारी थे, 16 कला संपूर्ण थे, डबल अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हम उनके चरित्रों का गायन करते हैं। तो बहनों और भाइयों, ये कोई काल्पनिक बातें नहीं है, ये इस विश्व की वास्तविकता है। उस समय भारत ही विश्व था और खंड अपने अस्तित्व में नहीं थे। बहुत समय के बाद आप देखिए और खंडों के खोजने वालों का इतिहास है कि अमेरिका खंड भी खोजा गया, ऑस्ट्रेलिया का खंड भी खोजा गया, अफ्रीका का भी इतिहास है, लेकिन भारत अविनाशी देश है, इसलिए इसका कभी भी संपूर्ण विनाश नहीं हुआ। उनकी संस्कृति युग बाय युग चलती रही, कुछ बातें भूल गई, लेकिन फिर भी आज समस्त विश्व की तुलना में बहुत ही श्रेष्ठ संस्कार आज भी भारतवासियों में दिखाई देते हैं। वो संस्कृति दो युग, आपका कल एक लेसन होना है सृष्टि चक्र के बारे में, इस बात को आप समझेंगे कि दो युग 2500 वर्ष समग्र विश्व में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जिसमें सत्यता, पवित्रता और दिव्यता का महत्व था, जिसके प्रमाण रूप ये देवी देवताएं दिखाए जाते हैं। ये हमारे निजी गुण थे, जिन गुणों को आज हम समझते हैं कई बार कि ऐसी पवित्रता, सत्यता, दिव्यता संसार में रहते हुए कैसे धारण हो सकती है, लेकिन नहीं, ये भारत का सत्य था, भव्य भूतकाल था कि यहां जो भी भारतवासी थे वो इतने महान थे। इसलिए आजादी के आसपास में ये गीत जो बना है, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा। इसका अर्थ ये है कि भारत भौतिक दृष्टि से भी बहुत संपन्न था, धन धान्य से भरपूर था, इसलिए गाया जाता है कि यहाँ दूध घी की नदियां बहती थी, मीन्स विपुल मात्रा में सर्व भौतिक प्राप्तियां भी थी। इसलिए भारत की संस्कृति भौतिकता का अनादर नहीं करती है, परंतु आध्यात्मिकता और भौतिकता का बैलेंस रखती है। इसलिए आप देखिए देवी देवताओं को कितने न वस्त्र अलंकार आभूषणों से सजाया जाता है। आज भी यादगार मंदिरों में कितने न हीरे मोती जवाहरातों से जड़ित सुवर्ण ड्रेस देवी देवताओं को पहनाए जाते हैं। उनके मस्तक पर रत्न जड़ित ताज और उनको सुवर्ण सिंहासन पर बैठे हुए बताते हैं ये कितने भौतिकता संपन्न देवी देवताओं का जीवन था और उनकी ये स्वर्गीय सतयुगी दुनिया थी, उसकी ये निशानियां। लेकिन भौतिकता के साथ साथ आत्मिकता आध्यात्मिकता भी अपने चरम शिखर पर थी। इसी का प्रतीक आप देखिए देवी देवताओं के मस्तक के पीछे प्रकाश का ताज दिखाया जाता है, जो आत्मा की पवित्रता और धर्म की श्रेष्ठ धारणाओं का प्रतीक है। तो ये बताता है कि हमारी संस्कृति आध्यात्मिकता और भौतिकता के बैलेंस की थी। इस प्रकार दो युग विश्व में पूर्ण सुख शांति पवित्रता की दुनिया रही। द्वापर युग से जब हम आत्म विस्मृत हुए, देहभान के वशीभूत हुए, तो हम विकारों के मार्ग पर गए, बॉडी कॉन्शियसनेस डेवलप हुआ, जिससे विशेष बने, विकारों के वशीभूत हुए, अपवित्रता जीवन में आई, जिसके कारण दुख अशांति का एहसास होने लगा। उसके बाद दैवी संस्कृति के बाद वैदिक संस्कृति का समय आया, जिस वैदिक संस्कृति को भी आज हम थोड़ा बहुत भूल गए हैं, जिनको हम सनातन संस्कृति कहते हैं। उस समय भी भारत का इतिहास आप पढ़िए, कितनी ऋषि मुनि हुए, कितने चिंतक हुए, जिन्होंने आध्यात्मिक साधना की स्थिति में रहते हुए अनेकों संशोधन किए। वो सिर्फ आत्मक उन्नति के बारे में नहीं, लेकिन आप जानते हैं ऐसे ऋषि मुनि हो गए जिन्होंने स्वास्थ्य, सर्जरी, अवकाश, गणित आदि अनेक क्षेत्रों के अंदर कितने नए रिसर्च हुए और प्रदान किए। हमारी वैदिक संस्कृति ने भी हमें बहुत अच्छे संस्कार दिए। संस्कृति का अर्थ ही है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो संस्कार धारणाएं स्वीकृत होते रहे, उनको हम संस्कृति कहते हैं। संस्कृति का संबंध हमारी मन बुद्धि संस्कार चैतन्यता से है। सभ्यता जिसको हम कहते हैं वो प्रकृति के पांच तत्व और उन पांच तत्वों से जो भी विज्ञान के संशोधन हुए, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और साधनों का निर्माण हुआ, वो सभ्यता। भारत का इतिहास आप देखेंगे कि यहाँ ऋषि मुनि ही वैज्ञानिक और कितने प्रदान उन्होंने किए जो बाद में उसको और रिफाइन किए गए, विकसित किए गए, पर उनके बीज तो भारत से ही मिले, तो वो कितनी उत्कृष्ट साधना की स्थिति, चिंतन की स्थिति कि उन्होंने नए नए निर्माण किए, नए नए सिद्धांत जगत के आगे रखे। हमें सच्चरित्रता की बातें भी सिखाई, अन्न शुद्धि की बातें भी सिखाई। हमारी संस्कृति सदा पर्यावरणवादी भी रही, इसलिए आप देखो आज तक भी, मुझे याद है बचपन में आज से 60-70 वर्ष पूर्व भी ये संस्कार थे, गाय को, कुत्ते को, चिड़ियाओं को अनाज भोजन दिए जाते थे, वृक्ष की पूजा क्यों की गई, वास्तव में वो सम्मान और रिस्पेक्ट की भावना प्रकृति के प्रति रखने के लिए हमें हमारी संस्कृति ने सिखाया। यहाँ कोई हिंसा की बातें नहीं, और संस्कृतियां यहाँ आई, हमारी संस्कृति को नष्ट करने के प्रयास किए, परंतु हमारी संस्कृति औरों से भी सीखकर और विशाल बनी और समृद्ध बनी। जिन्होंने असत्य हिंसा के मार्ग अपनाए, आज उन्हों की स्थिति हम देख रहे हैं कि वे स्वयं भी आपस में एक दो को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। अभी अभी कलियुग के आदि की बात करें, आज से अभी आजादी को भी 75 वर्ष ही हुए हैं, इसलिए 100-150 वर्ष पूर्व की भी हम संस्कृति और हमारे भारतीय समाज के संस्कारों की बात देखें तो कितने न महान नेताएं हो गए जो राजनीति के क्षेत्र में होते हुए भी आध्यात्मिक थे, उत्तम धारणाओं वाले थे, और इसलिए सत्य और अहिंसा के मार्ग से ही पूरा आजादी का मूवमेंट चला। हमारे स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, इस प्रकार के कितने न महान संत हुए जिन्होंने फिर से आध्यात्मिक सशक्तिकरण की बात कही और समाज में फिर भी समदृष्टि समभाव की बातें कहते हुए सबको अपने में समाया और रखा। पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहां सभी धर्म वाले हैं जो स्वतंत्रता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब ये समय आ चुका है हम भारतवासियों को जागने का। हमें अपनी ओरिजिनल इस पवित्र सत्य दिव्य संस्कृति के संस्कारों को फिर से अपने अंदर लाना है। हम भले पश्चिम की संस्कृति के प्रभाव में आए हैं, तब से जब से टीवी कल्चर आया सबके जीवन पर उन बातों का काफी प्रभाव हुआ। हम अपनी आध्यात्मिकता को बिल्कुल भूल गए, आध्यात्मिकता धार्मिकता में, सांप्रदायिकता में, क्रियाकांडों में बदल गई और धर्म की श्रेष्ठ धारणाएं जीवन में नहीं रही। उसका परिणाम हम देखते हैं कि जब जीवन भौतिक बन जाता है केवल, तो हमारे अंदर आत्मा में शक्ति नहीं रहती है। जितना साधनों की डिपेंडेंसी बढ़ती है, हमारी आंतरिक आत्म शक्ति का विकास नहीं होता है, और उसी का रिजल्ट हम देख रहे हैं कि आज आत्मा में शक्ति नहीं है, परिस्थितियों का सामना हम नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन का अनुभव हम भी करने लगे हैं। तो ये फिर से रिज्यूवनेशन का समय है, ये आध्यात्मिक क्रांति का समय है। कलियुग अंत और सतयुग आदि का ये संधि काल है, जब स्वयं परमात्मा आए हैं और वे हमें हमारे ओरिजिनल एक आदि सनातन देवी देवता धर्म का और आदि संस्कृति का सही ज्ञान दे रहे हैं, और उस सत्य ज्ञान और योग के द्वारा ऐसी आध्यात्मिक क्रांति ला रहे हैं जिससे हमारे संस्कारों में परिवर्तन होता है, अनेक विकारों और व्यसनों से हम मुक्त होते हैं। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में लाखों लाखों गृहस्थी भाई बहने हैं जो अपनी घर गृहस्थी में रहते हुए अपनी पारिवारिक सामाजिक जिम्मेवारियों को संभालते हुए भी, और आज की इस कलियुगी दुनिया के वातावरण के बीच भी बहुत सच्चरित्रता के संस्कारों को बनाते हुए आगे बढ़ रही हैं। विशेषकर क्यों बहने संस्कृति की संरक्षक है, क्योंकि बहनों से ही परिवार बनता है, गृहिणी को ही गृह कहा जाता है, परिवार का वातावरण और परिवार के सदस्यों को संस्कार देने का कार्य आज तक भी माताएं करती हैं, अधिक उनका रोल रहता है। इसलिए हमारी बहनों में अगर संस्कृति का सही ज्ञान होगा और हम स्वयं ऐसे श्रेष्ठ संस्कार बनाएंगे, तो हम अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपनी नई पीढ़ी में ये संस्कार दे सकेंगे। इसलिए भारतीय संस्कृति में जन्म से लेकर गर्भ प्रवेश से लेकर शादी करके गृहस्थी बनने तक के और अंतिम शरीर छोड़ने तक के श्रेष्ठ संस्कारों का ज्ञान दिया जाता है। हम अंधश्रद्धा से निकले, गलत रीत रस्मों से निकले, परंतु आध्यात्मिकता की सत्य बातों को समझे और उनको स्वीकार करे, ये बहुत जरूरी है। मैं एक ही उदाहरण देना चाहूंगी कि देखो, एक देवी की प्रतिमा है, कितने न वस्त्र अलंकार आभूषणों से सज्ज है, और एक अभिनेत्री जो भी फिल्मों में देवी देवता के रोल प्ले करते हैं, वो अभिनेत्री को भी कितने न वस्त्र अलंकार आभूषणों से सजाया जाता है। दोनों स्त्री हैं, दोनों श्रृंगारित हैं, परंतु आप देखिए, एक देवी के सामने कोई भी जाता है तो उसके मन में कैसे विचार आते हैं, कैसे विचार आते हैं, पवित्रता के विचार आते हैं, आत्मशुद्धि के, सुसंस्कारिता के विचार आते हैं। कितना भी पतित भ्रष्ट व्यक्ति होगा, उस देवी देवताओं की मूर्ति के सामने जाता है, वो अपने पापों को रियलाइज करता है, कन्फेस करता है और अपने परिवर्तन के संकल्प लेता है। वो ही श्रृंगार से सजी हुई एक अभिनेत्री के सामने जब लोग जाते हैं तो उनके मन में कौन से विचार है? उनके अंदर विकारी वृत्तियां पैदा होती हैं, दैहिक भाव उत्पन्न होते हैं, वो विषयी आकर्षणों में जाते हैं। क्या अंतर है? दोनों स्त्री है, दोनों ने श्रृंगार किए हैं, पर एक के आगे शुद्ध विचार आते हैं, दूसरे के आगे पतित विचार आते हैं। क्या अंतर है? कौन सी ऐसी धारणाएं हमने गवाई जो हम साधारण बॉडी कॉन्शियस बन गए? अगर आप देवी देवताओं की प्रतिमा को ऑब्जर्व करेंगे तो वो केवल भौतिक रूप से संपन्न नहीं थे, पर उनके अंदर जो चेहरे पर दिव्यता है, उनकी आंखों में जो निर्दोषता है, उनके व्यक्तित्व में जो अंतर्मुखता है, ये पवित्रता, निर्दोषता, अंतर्मुखता, दिव्यता, इन गुणों को, इन श्रेष्ठ धारणाओं को हमने गंवा दिया, तब हम साधारण बन गए। और हमारी संस्कृति में भी आज हम देख रहे हैं विकृति का प्रभाव आ गया है। हम फिर से, क्योंकि भगवान ने भी इस विश्व का परिवर्तन करने के लिए, इस आध्यात्मिक क्रांति के लिए, पुनः संसार को सतयुगी बनाने के लिए फिर से ज्ञान और योग का कलश माताओं और बहनों पर रखा है, क्योंकि बहनों में नैसर्गिक रूप से सहनशीलता, पवित्रता, लाज, सतीत्व, समर्पणमयता, त्याग, इस प्रकार के नैसर्गिक गुण हैं। इसलिए हम फिर से हमारी श्रेष्ठ संस्कृति को पुनर्स्थापित करने के लिए हम अपना बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। विद्यालय ये बातें हमें सिखाता है, प्रैक्टिकली भी, दैहिक और भौतिक दृष्टि से भी बहुत स्वच्छ, शालीनता, रॉयलिटी और व्यवस्थितता हमें सिखाए जाते हैं, और साथ साथ आंतरिक शुद्धि, दिव्य गुणों की धारणा का भी यहाँ ज्ञान दिया जाता है। इसलिए जब हम अपनी आत्मिक स्थिति उच्च बनाते हैं, गुण संपन्न बनाते हैं, हमारी बाह्य व्यवस्था भी अपने आप श्रेष्ठ बनती है, सुंदर बनती है, जो आप यहाँ देख रहे हैं। इसलिए परमात्मा पिता की ओर से, और हम भी पिछले 52 वर्षों से इस विद्यालय में समर्पित हैं, हम अपने अनुभव से भी आप सबके लिए शुभ भावना रखते हैं, शुभकामना रखते हैं कि जो आवश्यक है वो आधुनिकता, व्यवस्थितता, विज्ञान का दृष्टिकोण बेशक हम अपने जीवन में अपनाएं। यहाँ भी आप देख रहे हैं विज्ञान के सभी साधनों का यूज किया जा रहा है, लेकिन अपने विचार, वृत्ति, हमारे मन की भावनाएं, भाव, वाणी, व्यवहार, संस्कारों की शुद्धि और उसके एम्पावरमेंट और डिविनाइजेशन का भी लक्ष्य जीवन में हम रखें, तो हमारा जीवन इतना हम महान बनाएं कि हमारे साथ रहने वाले, हमारे बच्चे और हमारे आसपास के लोग हमारे जीवन से ही इन धारणाओं को सीखें। ओम शांति।
दीदी जी का बहुत बहुत थैंक्स है। और दीदी जी ने जैसे भारत की संस्कृति के बारे में हमें बहुत सुंदर बातें बताई और बहुत सहजता से बताई, तो दीदी का पुनः बहुत बहुत थैंक्स है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, सभी जो पीछे बैठे हैं प्लीज आगे आके बैठिए, ताकि वीडियो में जो शूटिंग हो रहा है उसके लिए. तो हम इस कार्यक्रम को जो आगे बढ़ाते हैं, तो दोस्तों जैसे हमारे विचार बहती हुई पानी की तरह हैं, यदि हम उन्हें गंदगी मिलाएंगे तो वह नाला बन जाएंगे, और यदि सुगंध मिलाएंगे तो वही विचार गंगा जल बन जाएंगे. तो आप सभी यहाँ पे यहाँ से क्या लेके जा रहे हैं? सो ज्ञान से भरा हुआ गंगा जल लेके जा रहे हैं सभी. अब हम अपने जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं डॉक्टर ऋचा राजकुमार जैन जी, उनका डायस पे स्वागत करते हैं और उन्हें आमंत्रित करते हैं. उनका ब्रीफ परिचय है. शी इज द ओनर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ डॉक्टर रिचाज यूनिक क्लिनिक, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ 24 स्टार प्राइड क्लब चैरिटेबल फाउंडेशन नागपुर एंड RRJ चैरिटेबल फाउंडेशन स्पिरिचुअल हीलिंग सेंटर नागपुर. बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं इनके नाम पे. वॉन 24 नेशनल एंड 5 इंटरनेशनल अवार्ड्स इन सोशल एंड प्रोफेशनल वर्क, एंड शी हैज ऑर्गेनाइज्ड वेरियस फ्री मेडिकल चेकअप्स एंड कैंप्स. तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर ऋचा राजकुमार जैन जी का.
जी थैंक यू दीदी. ओम शांति. आज का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा है कि आज संस्कृति में महिलाओं का क्या योगदान है. आज मैं यदि योगदान पे बात करती हूं तो सबसे पहले जैसे दीदी ने भी अभी बोला, इस भारत देश की संस्कृति जो रही है, हमने देवियों को पूजा है. मां दुर्गा के रूप में आज हम जब भी यदि बात करते हैं तो मां दुर्गा की बात आती है, और यदि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं तो मां काली की बात आती है. दिव्य ज्ञान और विद्या की बात करते हैं तो मां सरस्वती की बात आती है, और लक्ष्मी की बात करते हैं तो मां लक्ष्मी की बात आती है. ये तो आध्यात्मिक हो गई, देवियां बन गई, पर यदि आज के युग की हम बात करते हैं तो एक छोटा सा भजन था, इसकी एक लाइन मैं आपको रखूंगी कि कौन कहता है कि भगवान आते नहीं, पर कभी हम उनको दिल से बुलाते नहीं. जब भी मैं इस भूमि पर आती हूं और ब्रह्म बाबा का जो चमत्कार मुझे ऐसा लगता है, अभी दीदी मैं शेयर करना चाहूंगी कि मैं वीडियो देख रही थी, मेरे साथ कविता नागपुर से आई, तो मैं वीडियो देखते देखते 3D शो देखते देखते मैं जब बाहर निकली तो मैं उससे एक ही चीज बोली, मुझे पता ही नहीं था कि मैं कौन सी दुनिया में चली गई थी. ये शक्तियां यहां मिलती हैं. तो आज यदि महिलाओं के योगदान की मैं बात करूं तो इस विश्व में जो योगदान ब्रह्म बाबा के आशीर्वाद से आज सारी ब्रह्म कुमारियां दीदी चला रही हैं, इससे ज्यादा बड़ा मैं नहीं मानती. क्योंकि जो संस्कृति, जो ज्ञान, जो आत्मा की सोच, जो आत्मा के दर्शन आज यदि इस महिलाओं स्वरूप में आप दे रही हैं, ये अपने आप में बहुत अद्भुत है. उसके बाद यदि मैं कॉस्टिज्म पे आती हूं तो जैनों में, मैं जैन हूं, जैनों में मैं देखती हूं हमेशा कि हमारी जो माता जी जो घर छोड़ देती हैं, त्याग लेती हैं, और हमेशा के लिए अपने घर का परित्याग करके जैनों के नियम ले लेती हैं. यदि जैनों की संस्कृति यदि कोई चला रहा है तो वो माता जी हैं और वो ब्रह्मचारी बहने हैं. यदि मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात करती हूँ तो वो नंस बहने हैं जो नंस बन जाती हैं और क्रिश्चियन के धर्म को आगे बढ़ाती हैं. ऐसा ही यदि मैं हर संस्कृति की बात करती हूँ तो महिलाओं का एक बहुत बड़ा उदाहरण सामने आता है, जो इस देश की प्रगति में जिन्होंने अनादिकाल से, मतलब आज मैंने सुबह ही पूछा था कि ब्रह्म बाबा को कितने साल हो गए, तो बोले 59 तक वो थे. तो आज यदि मैं 59 को 23 से माइनस 69 तक थे, तो अभी यदि मैं माइनस करती हूं तो मैं ये मानती हूं कि 59-60 ईयर से इस संस्कृति को तो हम यहीं देख रहे हैं. तो ये तो संस्कृति होगी. और यदि आज के युग की हम बात करते हैं कि इस युग में 2000 में 1947 से अभी तक यदि हम बात करते हैं, तो राजनीतिक क्षेत्र में यदि हम बात करते हैं तो इंदिरा गांधी का बलिदान हम इस देश में कभी नहीं बोल सकते. पर आज भी प्रतिभा पाटिल जी ने प्रेसिडेंट बनाया और अभी हम जिस 2023 की बात करते हैं तो द्रौपदी मुर्मू जी जो आज इस देश की प्रेसिडेंट हैं और जो काफी बैक साइड से बिलोंग करती हैं पर आज देश की प्रेसिडेंट है, तो ये महिलाओं का योगदान है कि उन्होंने अपनी प्रतिभा ऐसी बनाई कि वो उस पद तक पहुंच सकी। इसी के बाद हर क्षेत्र में अपना एक मुकाम है। यदि मैं अंतरिक्ष में अभी चांद पे यान गया है पर हम चावला को कभी नहीं भूल सकते कि उन्होंने जो आज इतने साल पहले भी चंद्रा की यात्रा करके वो आ गई थी। इसी तरह से यदि स्पोर्ट्स में यदि हम बात करते हैं तो उषा को हम कभी नहीं भूल सकते, उन्होंने इतना बड़ा बलिदान, इतना बड़ा ये जो है ये हमारी हम ये बोल सकते हैं कि मोटिवेटर्स हैं कि जिन्होंने हमको सिखाया है कि आपको कैसे जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है। तो वो अपने अपने मुकाम, तो यदि लता मंगेशकर जी की मैं बात करूं तो सिंगिंग में हम उनको कभी नहीं भूल पाएंगे, वो हमारे देश से हमारे बीच से जरूर चली गई पर उनकी यादें हम सालों 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 याद रखेंगे। तो इस तरह से बहुत सारी इस देश की महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने हमको मोटिवेट किया है, हर क्षेत्र में अपना अपना मुकाम हासिल किया है। तो ऐसे अब यदि मैं अभी की यदि हम बात करते हैं तो हर संस्कृति में अपनी एक पहचान रखते हैं। एक जब लेडीज का रोल सामने आता है तो लेडीज का एक सबसे बड़ा रोल होता है जिससे लेडीज की आज भी इस दुनिया में पूजा की जाती है, वो है माँ। आज यदि हम संस्कृति की रक्षा करना चाह रहे हैं तो वो माँ होती है जो इस संस्कृति की रक्षा कर सकती है, पर माँ बच्चे को जन्म देने के बाद नहीं। मैं ये मानती हूं जैसे महाभारत की एक कथा है, हमने तो महाभारत नहीं देखी पर महाभारत की कथा जरूर सुनी है, टीवी पे जरूर महाभारत देखी है। द्रौपदी के गर्भ में जब अभिमन्यु थे तो उन्होंने आधा कहानी सुनाई और आधी कहानी ने उन्होंने ये तो सीख लिया, सॉरी द्रौपदी नहीं सुभद्रा, सॉरी एक्सेप्ट माय मिस्टेक, सुभद्रा जी के गर्भ में जब अभिमन्यु जी थे तब उन्होंने आधी कहानी सुनी कि चक्रव्यूह में जाना कैसे है, पर उनकी माँ की नींद लग गई और वो चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाए। इसी तरह से आज हम क्या कर रहे हैं ये बहुत गहन चिंतन का विषय है। जब हमारा बच्चा हमारे गर्भ में होता है तो ये प्लेटफॉर्म बोलने का नहीं है पर सब्जेक्ट वैसा है कि हमको बोलना पड़ेगा कि आज गर्भवती महिलाएं, इंडिया की संस्कृति है कि जब आप गर्भवती होते हैं तो आपको पूजन पे, ध्यान पे, आपके स्पिरिचुअल हीलिंग पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। पर आज हम ये देख रहे हैं कि जितनी कुकृत होते हैं वो गर्भवती महिलाएं भी कर रही हैं और उसके वजह से हम ये भूल जाते हैं कि हमारे गर्भ के अंदर जो बच्चा है उसको क्या संस्कार मिल रहा है। तो सबसे पहले संस्कार तो हम गर्भ में ही बिगाड़ दे रहे हैं। ये एक बहुत सोचनीय विषय है इस देश का जिसको हमको सोचना है। उसके बाद यदि हम जन्म लेने के बाद बात स्टार्ट करते हैं तो आज जैसे दोपहर का एक सेशन चल रहा था उसमें भी ये बात काफी हद तक सामने आई कि हमारे घर का माहौल, फैमिली को कैसे प्रोटेक्शन करना चाहिए। तो आज यदि महिला वो है, हम हमेशा संस्कार अपनी बेटियों को क्यों देना चाहते हैं? कितनी संस्कार की जरूरत यदि हमारी बेटियों को है, हम ये क्यों भूलते हैं कि उतनी संस्कार की जरूरत हमारे बेटों को भी है? यदि बेटे संस्कृत होंगे तो इस देश से कुकृत पहले ही मिट जाएगा। और हम गलती कहां कर रहे हैं कि हम संस्कार केवल महिलाओं को दे रहे हैं, हम संस्कार बच्चों को दें, लड़कों को दें कि जिस तरह से आप दूसरी बहन पे यदि दृष्टि डालते हो तो जिस तरह से आप अपनी बहन को बहन के उसमें देखते हो तो दूसरी महिलाओं को भी यदि आप बहन देखने लगोगे तो ये जो अत्याचार आज न्यूज़पेपर जब हम पढ़ते हैं, अभी 2-3 दिन पहले नागपुर के न्यूज़पेपर में प्रिंट हुआ था, हमारे यहाँ के एक मंत्री अनिल देशमुख की उनकी भाषण थे, उन्होंने ये लिखा था कि भारत देश से 2 लाख महिलाएं एक वर्ष में अपमान हो रही हैं। पर कभी ये सोचनीय विचार है कि ये 2 लाख महिलाएं जा कहां रही हैं? तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये क्यों हो रहा है? ये सारी चीज तभी आगे आ रही है क्योंकि हम माँ होकर, हम महिला होकर अपनी देश की संस्कृति की रक्षा नहीं कर पा रहे। यदि आज हम संस्कृति को अपना लें, जैसे मैं एक डॉक्टर हूं, आज सबके पास एक ही बहाना होता है कि मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं काम नहीं कर पाती, मेरी इतनी बिजी लाइफ है कि मैं काम नहीं कर पाती। पर मैं अपना ही उदाहरण आप लोगों के बीच में दो मिनट के लिए परमिशन हो तो रखना चाहूंगी कि मैं एक डॉक्टर हूं, पर मेरे जीवन की शुरुआत हमेशा भक्ता संगीत में जैन भजन से होती है। और एक दिन भी मेरा खुद का स्पिरिचुअल सेंटर चल रहा है नागपुर में, मेरा एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जिस दिन मैं मेडिटेशन नहीं करूं। और इवन मेडिटेशन के साथ हमारे धर्म में लिखा है कि भगवान की पूजा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये तो पृथ्वी है, हमको पूजा देवलोक की करना है। तो वो जो देवलोक की पूजा है वो मैं एक दिन भी मेरा नियम नहीं टूटता कि मैं अपनी जाप, अपना अनुष्ठान, अपनी पूजा, अपना मेडिटेशन नहीं करूं। उसके बाद दो दो क्लिनिक संभालती हूं। पूरे भारत देश की जितनी जैन समाज की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मैं राष्ट्रीय पद पर हूं, कहीं राष्ट्रीय संयोजक हूं, कहीं राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष हूं, पर मैं और कांग्रेस में भी मैं महाराष्ट्र की जनरल सेक्रेटरी हूं। पर कभी मैं ये बहाना नहीं बनाती कि मेरे को तो क्लिनिक है, मेरे को तो घर है, मेरे को तो बच्चे हैं, पर मैं ये काम कैसे कर सकती हूं। तो आप ये समझ के चल लेते हैं कि मुझे मेरे पास समय नहीं है। एक हमारे यहां से नागपुर से एक प्रस्ताव पारित हुआ था, वहां से रोज एक्सपोर्ट होना था दुबई के लिए, और एक्सपोर्ट किसका होना था आप समझेंगे, वो एक्सपोर्ट होना था गोट का। दीदी सविता दीदी से मैं पहले भी मिली हूं, चंदानी दीदी भी यहां चंद बैठी हुई हैं, मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी क्योंकि आप नागपुर आए हैं। दीदी जब हमारा दिल दहल गया जब ये सुना कि ये एक्सपोर्ट जीवित जानवर का होना है, रोज लगभग 10,000 से 20,000 से 50,000 पशु एक्सपोर्ट होना है, हम लोग का मन नहीं माना और हमने अपने सामने एक मुहिम चलाई और पूरे जैन समाज को इकट्ठा किया और हम रोड पे पिटीशन लेके उतर गए। आप बिलीव नहीं करेंगे, हम वो पिटीशन लेके सीधा हमारे यहाँ संघ मुख्यालय है उसके द्वार तक चले गए। उसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि उसी दिन वो गोट का एक्सपोर्ट रुका। इवन नितिन गडकरी जी, देवेंद्र फडणवीस जी उसका उद्घाटन करने वाले थे और गोट का एक्सपोर्ट रुक गया और हजारों लाखों पशु, कम से कम 4 लाख पशु एक्सपोर्ट होना था जिसकी संरक्षा हम थोड़े से आगे प्रयास बढ़ के कर पाए। तो हम यदि महिलाएं हैं, हम मन में यदि कोई चीज ठान लेंगे ना तो हम जरूर उस कार्य को कर पाएंगे। उसी तरह जैनिज्म में एक रूल है कि जिस तरह से अपन लोग, आप लोग जैसे समाधि कहते हैं कि हम मृत्यु नहीं बोलते, कि जीवन भर आप प्रयास कर रहे हैं तो उसको मृत्यु नहीं बोलते, ऐसे जैनिज्म में एक रूल है कि हमारे महाराज जी, हमारे माता जी जब आखिरी समय में अपना देह त्यागते हैं तो उसको समाधि मरण बोला जाता है। तो समाधि मरण में बीच में गवर्नमेंट ने स्टे ला दिया था कि आप उसको आत्म मृत्यु बोलिए, वो सुसाइड हो गया, उसको आप नहीं ले सकते। तो उस टाइम में हमारे महाराज जी लोगों ने पूरा मन से संचालित किया और नागपुर में हमने प्रयास किया तो 14,000 जैन लोगों को रोड पे निकाला। आप बताइए कि जैनिज्म कभी रोड पे नहीं आते, हम लोग 14,000 लोग रोड पर आए और पूरे देश में, इंदौर में कहीं 1 लाख आए, जबलपुर में 50,000 आए, हर जगह जहां जितनी समाज थी पूरी जैन समाज रोड पर आई। और उस समय ये पल देखने मिला कि हमारी माता जी महाराज जी की जो समाधि पे गवर्नमेंट ने स्टे लगाया था और वो केस उन्होंने वापस लिया और वो स्टे को वहां से हटा दिया। तो ये प्रयास है, यदि हम अपने प्रयास करेंगे तो हम सफलता पाएंगे। दूसरा, महिलाओं में एक बहुत बड़ा नेचर होता है, वो नेचर क्या होता है, महिलाओं में एक बहुत बड़ा नेचर होता है कि यदि आज आपकी जिठानी कोई काम कर रही है, यदि वो अच्छे से अपने बच्चों को संस्कृति सिखा रही है तो आप वो संस्कृति अपने बच्चों को नहीं सिखाओगे, आप उल्टा क्या करोगे, उनसे जेलसी करोगे, उनसे भेदभाव, अरे ये तो बहुत पूजा वाली है, ये तो ऐसी है, ये तो ज्यादा धर्म बताती है, ये तो ऐसा करती है। देखिए धर्म ही हमारे साथ जाने वाला है। आज आत्मा का हम इतना, दीदी ने अभी लगभग हमको इतना आत्मा का ज्ञान दिया, सब उन्होंने बोला कि ये शरीर नश्वर है, हमारी आंखें, हमारा मुंह, ये तो हम केवल यहां खड़े होने का साधन हमारा है, और उसके बाद भी हम भूल क्या जाते हैं, हम ये समझते हैं कि ये शरीर ही हमारा है, ये आज आपकी देवरानी जिठानी कल नहीं रहने वाली है, कल तो वो आप भाव बदल देंगे और कहां से कहां पहुंच जाएंगे, पर आप ये सोच के चलेंगे कि मैं तो यही हूं, आप इसी जीवन को मानते हैं, आप अपने परभव को भूल जाते हैं। ऐसा ही एक हमने बहुत साल पहले एक सोच रखी थी, कविता मैं सब लोग मिलके 2010 से हमने एक वुमेन अचीवर अवार्ड स्टार्ट किया नागपुर के अंदर, और इस बार का बहुत अच्छा गौरवान्वित मैं हुई कि आप सबको मैं शेयर करना चाहूंगी कि इस बार का अवार्ड नागपुर का जो ब्रह्म बाबा जी का हमारा सेंटर है वहां के विश्व शांति सरोवर में हमको करने का मौका मिला। और हमारी चीफ गेस्ट और कोई नहीं थी, हमारी डॉक्टर सविता दीदी और चंद्रानी दीदी थी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी कि हम इस तरह से, क्योंकि महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाओगे ना तो हम संस्कृति को कभी नहीं बचा पाएंगे। यदि आज हम वुमेन्स को बुला के वुमेन्स अवार्ड देते हैं, उसके पीछे मेरी सोच है कि जैसे आज खेल क्षेत्र में हम केवल अनादिकाल क्यों मान के चल रहे हैं हिस्ट्री, आज भी तो बहुत महिलाएं हैं ना जो हर क्षेत्र में। आज एक बात बताइए, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पे महिलाएं काम नहीं कर रही? आज अंतरिक्ष में महिला जा रही हैं, आज पायलट महिला बन रही हैं, आज कलेक्टर महिला बन रही हैं, आईएएस ऑफिसर महिला बन रही हैं, बैंकिंग क्षेत्र में महिला है, बिजनेस में महिला है, सर्विस में महिला है, हर जगह महिला है। जब महिला इतनी प्रतिभावान है तो महिला की संस्कृति भी उतनी प्रतिभावान, उतनी स्वच्छ है। हम हमेशा ये मानते हैं कि महिलाओं की जो सोच है ना वो एक जैसे जेंट्स केवल कमाई की तरफ सोचता है, वो अपनी फैमिली की तरफ सोचता है, पर महिलाओं की जो सोच है ना ये बहुत ब्रॉड है, पर हम उसको पहचान नहीं पाते। हम उतना ही कुंडित कर देते हैं अपने एक परिवार के बीच में, हम कुंडित कर देते हैं अपनी एक छोटी समाज के बीच में। यदि हम इसको मापदंड से नापे ना तो आपके आत्मा आपके माइंड में इतना पावर है कि आप अकेले होके हजारों लोगों को प्रोटेक्ट कर सकती हो, हजारों लोगों को सामना कर सकती हो। तो यदि संस्कृति की रक्षा पे यदि हम बात करते हैं, संस्कृति की यदि हम बात करते हैं तो संस्कृति, आज हम राजस्थान में खड़े हैं, मैं रहती तो महाराष्ट्र में हूं ना, पर महाराष्ट्र का कल्चर बिल्कुल अलग है, राजस्थान का कल्चर बिल्कुल अलग है, आज यदि हम उत्तर प्रदेश का कल्चर देख रहे हैं तो बिल्कुल अलग है, बिहार का हम कल्चर देख रहे हैं तो बिल्कुल अलग है। पर उस माँ को जरूरत किस चीज की है? उस माँ को जरूरत उस चीज की है कि जिस जहां का जो कल्चर है, अभी एक दो मिनट में मैं अपनी बात को खत्म करूंगी। एक मेरे दिल दहलाने वाला एक किस्सा लगभग मैं देख रही थी, व्हाट्सएप पे ही देख रही थी। एक जैन लड़की है और वो मुसलमान से शादी कर लेती है। जब वो मुसलमान से शादी करती है और उसकी माँ उसका ऑब्जेक्शन लेती है कि बेटा तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो बोलती है कि मम्मी मुझे वो लड़का अच्छा लगा और मैंने उससे शादी कर ली। जब शादी करने के बाद मुसलमान आजकल सबसे पहले क्या करते हैं, मैं कोई कम्युनिटी के अपोज में बात नहीं कर रही, केवल धर्म की बात आ रही हूं, कि वो क्या करते हैं, सबसे पहले उन बच्चों को अपनी कुरान पढ़ाते हैं, अपने धर्म के संस्कार सिखाते हैं। तो जब वो लड़की बाद में अपने घर पे आई, उसने अपनी माँ से एक बात बोली, ऐसा जैनों में बहुत कम होता है पर वो उदाहरण सामने आया इसलिए मेरा दिल दहला। उसने अपनी माँ से एक बात बोली, माँ मैं 25 साल तक आपके साथ रही पर मैं ये नहीं समझ पाई कि जैनों का मंत्र कौन सा है, जैनों के विनतियां कौन सी हैं, जैनों की पूजाएं कौन सी हैं, पर मैं एक महीने में ही वहां के जो संस्कार हैं मुसलमानों के वो सीख गई। तो ये क्या है? और ये चीज केवल मैं एक लड़की का उदाहरण नहीं दे रही हूं, आप अपने बच्चों को आधुनिक पढ़ाई के वजह से इतना व्यस्त कर देते हो कि आप ये भी भूल जाते हो कि हमारे बच्चे को जिस धर्म में हमने जन्म लिया एक पल के लिए वो मंदिर भेजने की जरूरत है। मंदिर क्यों भेजते हैं हम अपने बच्चों को? क्योंकि हमारे घर में निगेटिव एनर्जी होती है, हम दिन भर दुनियादारी की बात करते हैं, हमारे घर में उतनी पॉजिटिव सोर्सेज नहीं होते, पर हम जिस भी मंदिर में जाते हैं मंदिर एक पॉजिटिव सोर्सेज का, एनर्जी सोर्सेज का हमारा गुरु होते हैं, हमारे भगवान होते हैं, तो उनके पास इतनी पॉजिटिव रहती है कि उनके दर्शन करने से हमारे उस दिन की पॉजिटिविटी हमको बहुत पॉजिटिव मिल जाती है। पर हम ये भूल गए हैं कि हम स्कूल भेजने के लिए रेडी हैं, हम क्लासेस भेजने के लिए रेडी हैं, हम विदेश में पढ़ाई कराने के लिए रेडी हैं, हम बच्चों को आधुनिक क्लब भेजने के लिए रेडी करते हैं और कभी उसका ऑब्जेक्शन नहीं लेते। ठीक है, आज का जमाना है, आप सब जगह भेजिए, पर जितना संस्कार आप 21 सेंचुरी का दे रहे हैं उतना जरूरी है आपको अपनी इतिहास उनको याद दिलाने का, उतना जरूरी है आपकी संस्कृति उनको याद दिलाने का, उतना जरूरी है आपके धर्म उनको याद दिलाने का, और उतना जरूरी है आपके इथिक्स, आपके रूल्स, आपकी डेली लाइफ, आपके डेली के कस्टम्स, यदि वो आपने याद नहीं दिलाए तो मैं ये नहीं मानती हूँ कि आप एक अच्छी माँ हैं, आप अब एक अच्छी महिला हैं। तो अब मैं यही विनती करूंगी, आज यहाँ पर यदि मैं आई हूँ और मुझे बोलने का मौका यहाँ दिया, हो सकता है मेरे बर्ताव में कुछ गलती हो तो उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आज मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया तो हम सब ये मान के बैठेंगे, जिस तरह से कौन कहता है कि भगवान आते नहीं, वैसा ही एक भजन और बहुत है। मैं एक दिन मैं सो गई रोते रोते, क्या भजन है, मैं सो गई रोते रोते, पर भगवान क्या बोलते हैं, मैं हूं ना। आप कभी भी यदि हमको कोई तकलीफ है, हमको कोई परेशानी है, हमको कोई चीज है, मैंने अपने जीवन में बहुत पाया है। मैं आते आते रास्ते में कविता को बता रही थी कि कविता, मैं जब अपने मंदिर, घर के ही मंदिर में बैठती हूँ और मेरा मन जब बहुत दुखी होता है, किसी चीज से परेशानी होती है, मन में बहुत उलझने होती हैं, मैं घर के मंदिर में बैठ जाती हूँ और मुझे उस चीज का आंसर मिल जाता है। तो यदि हम बाबा से बात करें, आप तो उस जगह पे बैठे हो जहां बाबा से हम डायरेक्ट बात करते हैं। हम बाबा को अपनी मन की बातें बताते हैं, बाबा से हम डायरेक्ट आध्यात्मिक ऊर्जा लेते हैं। तो ये ध्यान और मेडिटेशन का जो समय है ना, इट्स टेकिंग ओनली 2 मिनट्स। यदि हम 2 मिनट भी अपने जीवन पे कॉन्सेंट्रेट कर लें तो ये मान के चलना, हजारों उपास एक तरफ भूखे रहने वाले, जिसमें हम बोलते हैं आज मेरा उपास है, मुझे खाना नहीं खाना है, आज मुझे ये है, मुझे ये नहीं करना है। आप ये ध्यान रखिए, जो शक्ति आत्मा से मिलती है, जो शक्ति, जो एनर्जी हम मेडिटेशन से ले पाते हैं, आप 1000 उपास एक तरफ रख देना, एक 2 मिनट का मेडिटेशन एक तरफ, इतने पुण्य के बंद और इतने कर्मों के आपके कटते हैं। तो ये यदि आपने मान लिया और ये यदि अपने जीवन में अपना लिया, और अपने बच्चों के साथ 2 मिनट तो बैठना है, 2 मिनट तो अपनी फैमिली के साथ बैठना है, वो करना स्टार्ट किया, तो जरूर आप जीवन में बहुत। दूसरा एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस आप लोग जो कर रहे हैं आज की डेट में, जितना मोबाइल को रात में कम यूज करेंगे उतना आप जीवन में अच्छा। आज सबसे बड़ी गलतियां हो गई हैं कि बच्चे डेढ़ डेढ़ दो दो बजे तक मोबाइल यूज करते हैं और वो मोबाइल में क्या देखते हैं वो आप भी नहीं समझ सकते। तो थोड़ा सा हमको वहां पे भी बहुत जरूरत है कि अपने आप को संभालना, अपने बच्चों को थोड़ा सा वहां पे बात करते रहना, समझना तभी करते हैं, एकदम से हम किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। मैं अपनी बात को यहाँ विराम देती हूँ। सादर जय जी, ओम शांति।
थैंक यू मैम, आप बहुत व्यस्त रहती हैं मैडम, बट आपने अपना कीमती समय निकाला और वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ही सुंदर हमें बातें बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगी हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर को, श्रीमती बेला खजूरिया फ्रॉम वडोदरा। शी इज द फाउंडिंग डायरेक्टर कायाकल्प ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट विद महावीर फाउंडेशन ट्रस्ट वडोदरा एंड हैज बीन वर्किंग हेयर फॉर लास्ट 6 years। She is a passionate teacher of English, a strong communicator, character builder, and an able supervisor and administrator of school teaching system. She is also an excellent counselor to solve personal, health, and life problems and give career guidance to students in college as well as young mothers. Ma'am, aapka bahut swagat hai.
ओम शांति। परमपिता परमात्मा शिव बाबा के चरणों में वंदन, और यहाँ पर दीदियाँ और आपको भी मेरा प्रणाम, और सबसे ज़्यादा ये सब जो डायस, ऑन दिस साइड ऑफ डायस, आप लोगों को भी मेरा वंदन। आपको इसलिए वंदन मैं कर रही हूँ क्योंकि आप लोग 3 दिन से ये हमारा मीन्स हमारा जो सेशंस है वो सब सुन रहे हैं और डाइजेस्ट रेगुलरली अटेंड भी कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो कमेंडेबल, राइट? एंड दिस शुड गो अ लॉन्ग वे, क्योंकि ये एक लास्ट सेशन है हमारा, हमने 3 दिनों से काफी सुना, तो आई थिंक कि मैं ये सब रिपीट नहीं करूंगी। बींग अ टीचर, जैसे टीचर में कैसा होता है कि समराइज करना होता है, राइट? तो आई वुड लाइक टू समराइज कि हमने क्या सीखा इतने दिनों में, एंड आई थिंक कि अगर आप अपने आप को भी पूछेंगे, आपने नोट्स भी बनाई होगी, ये सब होगा, तो यू नो यू कैन रिवाइज दोज एंड आंसर कैन कम फ्रॉम यू ऑल्सो कि आज तक मीन्स इतने 3 दिनों में हमने क्या सीखा। बट ये जो हमने सीखा है यहाँ पर इतना, तो मैं रिविजन में इतना कहना चाहूंगी कि जो फैमिली वैल्यूज या फैमिली बॉन्डिंग हमें जो करना है राइट, या फैमिली को जॉइंट फैमिली सिस्टम को हमें रखना है, और ज्यादातर हमारा जो था झुकाव वो बच्चों पे था, दैट इज हाउ टू नर्चर अ चाइल्ड, विच इज वेरी ट्रू। जैसे मैम ने बोला कि और दीदी ने भी बोला कि होम से ही वो शुरुआत हो जाती है, दैट इज नर्चरिंग अ चाइल्ड। तो उसमें जो रोल है वो हस्बैंड और वाइफ दोनों का आता है। तो गर्भ संस्कार परीक्षण अभी तो काफी फेमस हो गया है, गवर्नमेंट का भी चल रहा है, दैट इज गवर्नमेंट इज ऑल्सो यू नो प्रोपोगेटिंग ये कर रहे हैं उससे। और दूसरा जो है वो शायद इतना फेमस नहीं हुआ है, दैट इज नवविवाहित कपल का, नवविवाहित कपल का काउंसलिंग, पहले जो शादी से पहले और शादी के बाद, वो गवर्नमेंट का चल रहा है, एटलीस्ट गुजरात में मुझे मालूम है, यहाँ का आई मीन आई डोंट नो अबाउट अदर स्टेट्स। तो वो क्यों जरूरी है? और उसके आई वुड से अ स्टेप फर्दर कि उससे ज्यादा फैमिली, यानी कि पूरा जो हम लोग जो दो परिवार का मिलन है शादी, राइट, बिकॉज उसमें जो दो संस्कृतियां मिलती है, दो वैल्यू सिस्टम्स, क्योंकि दोनों की अलग अलग ब्रॉटअप होती है, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, कुंडलियां मिलाते हैं या वी गो फॉर प्री वेडिंग शूट्स और काफी सारे करते हैं, बट डू वी यू नो, हम लोग कभी ऐसा नहीं सोचते कि चलो दो फैमिलीज का हम पहले मीटिंग्स ऐसे करें कि वॉट आर योर यू नो लाइफ स्टाइल, घर में क्या है, ये बेटी जो शादी करके आएगी उसकी वैल्यू सिस्टम क्या है, वी नेवर थिंक अबाउट दिस, व्हेन आइदर डू वी गिव इम्पोर्टेंस। कोई फैमिली में होता होगा जो आई मीन लव मैरिज में, बट इसको बढ़ावा अगर हम दें तो काफी सारे जो फैमिली के जो इश्यूज जो आ रहे हैं और ज्वाइंट फैमिली सिस्टम जो नष्ट होती जा रही है वो कम होगा। वाई? बिकॉज देर इज एन ओपन कम्युनिकेशन, पहले से भी यू नो द डिस्कशन एंड वो सब जो चलेगा उससे काफी प्लेटफॉर्म थोड़ा स्मूथ रहेगा। उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आते हैं दैट इज इन जॉइंट फैमिली सिस्टम, जो बहुत यू नो वैल्यू सिस्टम जो हम कहते हैं वो अभी नष्ट क्यों हो रही है, बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स मी टाइम स्पेस। कल भी हमने सीखा कि ईगो इश्यूज से ज्यादा आते हैं, और लैक ऑफ कम्युनिकेशन, दैट वॉज फॉर आई मीन चिल्ड्रन ऑल्सो, एंड देर इज अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द फैमिलीज विच इज स्टेइंग टूगेदर, दैट इज वाई वो प्रिफर क्या करते हैं कि हम लोग अलग रहे, हमें हमारा मी टाइम मिले या मेरी स्पेस बनी रहे। दूसरा जो प्रॉब्लम आता है दैट इज फॉर फाइनेंस पर्पज, कि जब अगर फादर सन या दूसरे भाई बहन भाई सब साथ में रहते हैं तो दूसरा प्रॉब्लम आता है दैट इज विथ फाइनेंसेस। तो वो भी बैठ के सुलझा सकते हैं, एवरीथिंग कैन बी थॉट ओवर राइट एंड टॉक्ड ओवर, वो भी हो सकता है। एंड काम का जो होता है दैट इज काम हम जो करते हैं, जो काम का डिविजन होता है, अगर वो भी करे तो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम कैन स्टिल वो इंटैक्ट हम कर सकते हैं। और ये मींस ये सब जो चीजें हैं, एंड नाउ द रिविजन दैट इज द समराइजिंग पार्ट जो मैं करती हूँ, दैट इज कि हमें पहले दिन से बोला गया था पहले सेशन में कि वी शुड लव अवर वर्क, यानी कि पैशन होना चाहिए हमारे काम में, अगर इट इज कोई भी काम आप करो तो अगेन नाउ इट कम्स टू अ फीमेल, क्योंकि ज्यादातर हमने फोकस फीमेल्स पे किया है, एंड उसको घर का भी बैलेंस करना होता है, वर्क का भी बैलेंस करता है। कल मैम ने जो शाम के सेशन में बोला था कि टेक ओनली दैट मच ऑफ वर्क जो आप कर सको, पहले अपनी घर की जो ड्यूटी है वो करके देन, तो क्या स्ट्रेस नहीं होगा, तो स्ट्रेस नहीं होगा तो हार्मनी फैमिली में बढ़ती रहेगी। और इसके लिए क्या होता है, द मेन थिंग अगेन इज कि एवरीबडी वॉन्ट्स अ करियर राइट, करियर सबको पसंद है, बट फीमेल्स को ज्यादा अगर करियर ओरिएंटेड रहना है तो अपनी पहले कैपेसिटी देखनी पड़ेगी कि हाउ मच उसकी कैपेसिटी है, फिर क्योंकि शी इज नर्चरिंग अगेन, वो एक चाइल्ड को नर्चर कर रही है, दूसरे चाइल्ड को वो भी है, तो स्ट्रेस में इफ आई से डॉक्टर है तो आई मे बी रॉन्ग, बट स्ट्रेस हार्मोन से जब हम कंसीव करते हैं तो अगेन हम अच्छे कुछ भी करें बट स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत हमें डैमेज करते हैं, तो वो स्ट्रेस कहीं से भी आता है, तो दैट शुड बी थॉट अपॉन. देन आज के अगेन सेशन में हमने बोला था कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल का अवेयरनेस, और मगर दैट गोज अगेन अ स्टेप फर्दर कि क्या है कि एवरी मंथ जो पीरियड्स आते हैं, जो हार्मोनल चेंजेस फीमेल्स में आते हैं, तो क्या फैमिली को पता है? ऐसा नहीं कि सब में, बट मूड स्विंग्स आते हैं, वो ज्यादातर फीमेल्स क्या हो जाती है, मींस चिढ़ जाती है, गुस्सा हो जाती है बिफोर प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम, जिसको हम पीएमएस बोलते हैं, दैट अ फैमिली शुड अंडरस्टैंड. इवन मैं कॉर्पोरेट लेवल पर भी ये ट्रेनिंग में बोलती हूँ कि यू इवन ट्राई टू, बिकॉज अभी ये ओपन हो गया है, अभी कोई ऐसा ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि वी कांट डिस्कस, तो इवन इन दैट ऑल्सो अ फीमेल शुड बी अंडरस्टूड ड्यूरिंग दीज डेज. वाई? क्योंकि उसके अंदर क्या है तो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है. ये सब जो अनटच्ड जो चीजें हैं, अगर वो हम आगे लाएं, मीन्स वी अंडरस्टैंड दैट. देन द थर्ड पार्ट वॉज की डिसिप्लिन. डिसिप्लिन में क्या है कि काफी सारा एक वर्ड डिसिप्लिन है, मगर उसमें कितना सारा आ जाता है, बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग. कि डिसिप्लिन में ऐसा नहीं कि खड़े रहो बैठे रहो, नॉट दैट, बट डिसिप्लिन ऑफ टाइम, डिसिप्लिन ऑफ स्पीच, एवरीथिंग. तो वो जो है, यानी वो कैसे आएगा, तो कल शाम के सेशन में बोला था कि दृढ़ता से. दृढ़ता इज अगेन यू आर फर्म अबाउट वॉट यू वॉन्ट टू डू. तो हमें पता है कि हमारे अंदर दो तरह की आवाज होती है, वन इज बैड वॉइस, वन इज गुड वॉइस. तो झुकाव किस तरफ जाएगा, वो जो बोले थे कि फिसलने वाला, फिसलने वाला यानी कि आज नहीं करते हैं या आज देर से सोते हैं या कुछ भी, तो उसमें जो हमें स्ट्रेंथ आती है, देन अगेन दैट कम्स विथ मेडिटेशन. तो वो जो दृढ़ता है, वो जो हमें लानी है अपने लाइफ में, एंड वो आगे कैरी फॉरवर्ड कैसे होगा, बिकॉज वी हैव टू लीड बाय एग्जांपल. जो हम लाइफ जो जीते हैं, मैंने भी जिंदगी में काफी सारी गलतियां भी की होगी और की है, वो पता है कि कौन सी, बट नाउ इज द टाइम कि यंगर जनरेशन को इतना सारा जो ज्ञान मिलता है, या आप लोगों को जो है, यू विल बी पासिंग एंड ऑन टू अदर लाइक्स, तो आई मीन सेक्स ऑफ सोसाइटी आप करेंगे, तो उसमें जो आप ये है, तो डिसिप्लिन कैसे आता है, टाइम, पंक्चुअलिटी, बिकॉज हमारी संस्कृति हम जानते हैं कि कितनी है. तो प्रिजर्विंग द संस्कृति यानी कि कल्चर, तो कल्चर इज येस, मैम ने जो बोला कि हम पूजा को लास्ट प्रेफरेंस देते हैं, हम आध्यात्मिकता को लास्ट प्रेफरेंस देते हैं, तो वो जो नहीं होना चाहिए. बट बियॉन्ड दैट ऑल्सो राइटियसनेस, ट्रूथफुलनेस, एथिक्स, वो जो होती है, दैट इज बीइंग ट्रूथफुल, वो जो है वो भी एक हमारे संस्कार है. तो वो हम इम्बाइब करेंगे, हम डिस्कस करके कि भाई क्यों ऐसा होता है, एंड दैट थिंग शुड बी अगेन पुट मोर इनटू प्रैक्टिस. तो वो एक था. देन अदर थिंग जो थे, दैट इज गिविंग पेशेंट हियरिंग टू चिल्ड्रन, दैट इज आप बच्चों को आप ज्यादा सुनो, उसको टाइम दो, उसको समझो, राइट? तो और वो भी है, और उसके सामने फैमिली को भी समझो. इवन हमारे जो फैमिली में जो मेंबर्स है, उसको भी जो कहना है, तो देर शुड बी अ कोऑर्डिनेशन, देर शुड बी कम्युनिकेशन गैप. जो होता है जनरेशन गैप है, देर इज कम्युनिकेशन गैप, वो हमें ब्रिज करने की जरूरत है. वो कैसे ब्रिज होगा, हाउ? तो दैट इज लेस ऑफ सोशल मीडिया, लेस ऑफ अवर हम जो बाह्य मुखी है, दैट इज हमें इसका फोन आया, मैं रिप्लाई नहीं करूंगी तो नहीं अच्छा लगेगा, इसका मैसेज मैंने देखा बट मैंने रिप्लाई नहीं किया, तो वो हम आउटर वर्ल्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं और फैमिली को हम लास्ट प्रेफरेंस देते हैं. वो हमें नहीं करना चाहिए. फर्स्ट इट शुड बी फैमिली फर्स्ट, जो हम कहते हैं ना कि वो करके देन यू स्टेप स्टेप फर्दर, वो आप करोगे. तो उसके लिए अगेन आएगा दृढ़ता, डिसिप्लिन, कि हम कैसे करें. आज सुबह का जो सेशन था, उसमें था दीदी ने पूरा बोला कि हाउ गुड फूड, सात्विक फूड. तो सात्विक फूड किसको बोलते हैं? अभी जो जनरेशन, नई जनरेशन है, तो उनको क्या चाहिए कि हम जैसे कुछ बोल देंगे तो दे नीड लॉजिक, दे नीड रीजनिंग, राइट? तो वो अगर फादर और मदर दोनों वो नॉलेज इकट्ठा काफी अभी यूट्यूब में बुक करके देन दे से कि वाई दिस इज इम्पोर्टेंट, सात्विक फूड किसको बोलते हैं, वाई नॉन वेज इज नॉट गुड, या बहुत सारा सुबह का खाए, सुबह का शाम तक, और अभी सब जो प्रचार कर रहे हैं तो बाय साइंटिफिक, दैट इज बाय कंबाइनिंग साइंस एंड कल्चर टुगेदर, स्टूडेंट आई मीन स्टूडेंट्स नहीं चिल्ड्रन कैन अंडरस्टैंड बेटर विथ दैट लॉ. बट उसके लिए हमें टाइम डिवोट करना पड़ेगा, हमें लर्निंग करनी पड़ेगी, हमारे फोरम्स ऐसे होने चाहिए कि जहाँ हम ऐसे कुछ डिस्कस कर सकें. अगर हम सिर्फ वो सब डिस्कस करेंगे मीन्स पॉलिटिक्स और वो सब, बट हाउ टू बिल्ड अ गुड सोसाइटी, वो अगर किटी पार्टी में भी ऐसा कुछ वो की टॉक आया वो आया, बट मेन थिंग ये कॉन्फ्रेंस का भी मैं बोलना चाहूंगी कि इतना सारी मेहनत इतना सारा हुआ, बट वॉट इज अ स्टेप फर्दर, वॉट इज अ स्टेप फर्दर, हमने बहुत अच्छा था बहुत ये था वो था, बट आर वी गोइंग टू पास इट ऑन, हम लोग दूसरों को पास इट ऑन करेंगे, यानी कि वो जो बोलते हैं ना कि मल्टी लेवल मार्केटिंग, राइट, MLM जो होता है कि एक 10 करेंगे 10 20 करेंगे, तो ऐसा यहाँ से हम अगर करके जाएंगे, राइट, अगर हम ये सब रिविजन जो हम करते हैं और वो अगर हम करेंगे तो ये कॉन्फिडेंस का यू नो द मेन पर्पस वुड बी सर्व्ड. अदरवाइज कुछ हाँ जाना आपने एक बोला बहुत अच्छा, नोट्स लिखेंगे, फोटोग्राफ्स रखेंगे, रील्स रखेंगे, बट बियॉन्ड दैट इम्प्लीमेंटेशन कैरिंग इट फर्दर कि हाँ चलो मैंने ये सीखा है, मैं यहाँ सीख के आई हूँ, अभी मैं 10 ऐसे सेशंस दूसरों को, या स्कूल स्पेशली म्यूनिसिपल स्कूल्स में आप जा सकते हैं. एंड व्हाट आई सॉ आज जो वर्कशॉप था, वर्कशॉप में आई फेल्ट कि ईच पार्टिसिपेंट इज अ स्पीकर बाय देमसेल्व्स, बिकॉज वो जो अपने विचार रख रहे थे, वो जो अपनी बातें रख रहे थे, इवन दे हैव द फुल पोटेंशियल. तो जो बोलते हैं ना कि अपनी अंदर की शक्ति को पहचानो, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट, तो ये शक्ति आप में है, तो आप जहां भी जाएंगे, अगर टीचर नहीं भी है या कोई भी है, तो डिसाइड करिए कि नहीं मैं ये जो सोच है वो आगे यू नो लेकर जाऊंगी, तो ही ये कॉन्फ्रेंस इतनी मेहनत इतना सारा जो हमें 3 दिनों से जो ज्ञान मिला है दैट इज अनपैरेलल्ड, तो दैट वुड बी रियली रियली इफेक्टिव. एंड ऑन बिहाफ ऑफ ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट मैम, मैं आप सब यहाँ के कॉन्फ्रेंस में फ्रॉम बॉटम टू द टॉप मैं सबको थैंक्स कहना चाहूंगी, क्योंकि ये जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करना जो होता है, वो हमारे घर में शादी ऑर्गेनाइज करना वो बहुत छोटी बात है जैसे, बट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजिंग इट गोज अ लॉन्ग वे, क्योंकि बहुत बहुत सारी मेहनत जाती है. और मैं ना मीन्स दिस इज माय फोर्थ टाइम एज अ स्पीकर, आई एम फॉर द फर्स्ट टाइम, बट मैंने देखा है कि हाउ यू नो फ्लॉलेसली सब चीजें, कितने लोगों की मैनेज होती है, बैक एंट्री कितनी होती है सब का, हमें देखिए माइक सिस्टम, ये डेकोरेशन टाइमली, फिर ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम एवरीथिंग, और जो किचन में है उसमें मैं एक और विनती करना चाहूंगी कि हम पार्टिसिपेंट्स को आप सेवा का मौका दीजिए. यू नो हम लोगों का आप जो फॉर्म भरवाते हैं या जो भी करते हैं उसमें जो भी सेवा जो भी लायक है, तो हमें क्योंकि बहुत कल मैं आपू दर्शन के लिए नहीं जा रही हूँ, कल मैं सेवा में जाऊंगी, उधर जो भी मुझे पाएगा वो मैं करूंगी. तो द थिंग इज कि जो भी अभी आप करें तो जिन अस अचार हमें नहीं पर कोई से, तो उससे क्या की भावना आएगी, जैसे अभी CSR जो है दैट इज कंपनी ने 2% का तो कंपलसरी कर दिया है, बट अभी कॉलेजेस भी क्या करती है बच्चों को NGO में वर्क करने का, देन इवन द कॉर्पोरेट have to work in an NGO. हमारे में काफी सारे आते हैं and they really work good. तो उसको compulsory हो गया है, तो हमारे लिए आप compulsory करिए. तो you know ये सेवा का भावना, क्योंकि सबको अच्छा लगेगा ऐसे you know आके खाके चले जाने का, रोज मेरे को दुख होता है, but the thing is के give us this and वो जो बोलते हैं कि सफाई वर्कर से from till the topmost people, on behalf of each and every participant, I thank each and every one of you. Keep bahut acha aapne kiya. Aur ek aur suggestion dena chahungi with due respect. कि ये जो शिविर आपने किया तो अभी ये फैमिली के लिए कीजिए, ये क्योंकि जो टॉपिक है, जो स्पीकर का अगर आपका रिकॉर्डिंग है तो वो सेंटर पे स्पेशली फैमिली इसको बुला के कराइए, बिकॉज एक महिला ने जो समाज जो जुड़ता है एंड जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो आते हैं दैट इज मोर विथ यू नो एल्डर्स और वो सब, तो वो लोगों का मुझे एक आशा है कि बॉन्डिंग बढ़ेगा, तो वो भी हम कर सकते हैं और कुछ भी, क्योंकि हिंदी में मैं मेरी पहली स्पीच थी तो द थिंग इज कुछ भी मेरी क्षति या कुछ और जैसे भी हम जैन में भी बोलते हैं दैट इज मिच्छामि दुक्कड़म। और दूसरा हाँ एक पॉइंट मैं भूल गई कि एक बुक है आई हैड रेड इन माय कॉलेज डेज, मैंने पढ़ी थी, दैट इज आई एम ओके यू आर ओके, राइट। तो मैं भी सही, आप भी सही। और जैनिज्म में एक प्रिंसिपल है यू मे बी नोइंग दैट इज अनेकांतवाद, यानी कि मैं जो बोलती हूँ वो ही सही है वो नहीं। महावीर ने क्या बोला था, भगवान महावीर ने अनेकांत मीन्स यू आर ऑल्सो राइट। अगर वो भावना भी हम फैमिली कॉर्पोरेट सब जगह हम करें एंड देन किसी डिसीजन पे आए तो अगेन प्रॉब्लम्स कम रहेंगे और एक सशक्त समाज का निर्माण होगा। ओके, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपने विचार प्रस्तुत किए। और जैसे कि हमारे स्पीकर्स ने गर्भ संस्कार के बारे में बहुत विस्तार से बताया तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मैं एक एमडी गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, आई एम प्रैक्टिसिंग सिंस 5 years एट न्यू लाइफ हॉस्पिटल इन दिल्ली और फैकल्टी हूँ गर्भ संस्कार सेशंस में सिंस 3 years। और बहुत ही अच्छे हमारे को पेरेंट्स से फीडबैक्स मिलते हैं कि बच्चों के जो संस्कार परिवर्तन हुए हैं और उनकी काउंसलिंग सेशंस में भी बहुत उनको काउंसिल करते हैं उन सभी पेरेंट्स को और बहुत अच्छे हमें इसके फीडबैक्स मिलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम इस सेशन में और थैंक यू। तो मंच पे आदरणीय राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी जी हमें स्पीच और मेडिटेशन बताएंगे कि हमें कैसे मेडिटेशन करना होता है। शी इज अ सीनियर राजयोगा टीचर, श्री गंगानगर से दीदी जी आए हैं और आप 50 से भी अधिक वर्षों से ज्ञान में हैं। आपने पंजाब, चंडीगढ़, अमृतसर, राजस्थान अनेक स्थानों पे अपनी सेवाएं दी हैं। 1968 में ध्यान के माध्यम से आपको बाबा का परिचय मिला। 1969 में पहली बार अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाकर आपने तुरंत ही अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। वर्तमान समय में आपके नेतृत्व में 6 सेवा केंद्र एवं 25 गीता पाठशालाएं में 1000 से भी अधिक ब्रह्मा कुमार भाई बहने ईश्वरीय पालना देते हुए अपना जीवन श्रेष्ठ बना रहे हैं। वीके मोहिनी दीदी जी का बहुत बहुत स्वागत है।
ओम शांति। सम्मान्य मंच, मेरी साथी बहने और बहुत विवेकवान वक्तागण और सामने बैठी हुई मेरी सभी भाई और बहने, बहुत समय से हम सुन रहे हैं, कहते हैं कि सुनने की भी कुछ कैपेसिटी होती है, हद होती है, लेकिन यहाँ पर जो सुना जा रहा है और सुनाया जा रहा है वो इतना अच्छा लगता है कि दिल होती है कि सुनते रहे। इसलिए बीच में अपने ईश्वरी विश्वविद्यालय का ये नियम है कि हम थोड़ा सा साइलेंस में जाकर अपने आप को अंदर से देखें, अंदर उतरें और पूछें अपने आप से कि जो सुन रहे हैं, सुबह भी सुनते हैं, दिन में भी सुनते हैं, रात को कुछ और सुंदर दृश्य देखते हैं या कुछ और सुनने और देखने को मिलता है, ये सब देखते सुनते हुए हम अपने आत्मा के अंदर इन चीजों को कहां तक और कितना आत्मसात कर सकते हैं, और कुछ न कुछ हम सबको अपने जीवन के अंदर उतारना है, ये पक्का करना है, ये दृढ़ता से संकल्प लेना है। इसलिए बीच में ये मेडिटेशन कराने का समय दिया जाता है थोड़ा सा, कि हम सभी बिल्कुल शांत और एकांत में बैठकर अपनी अंतरात्मा से कोई न कोई दृढ़ संकल्प लें, रोज के सेशन से जो बात हमें अपने जीवन के अंदर अच्छी लगे उसको अपनाने के लिए। तो मैं एक छोटा सा दृश्य आपके सामने इमर्ज कर रही हूं चित्र द्वारा, कि हम सब ने शिव परिवार देखा है, हम उसको शिव परिवार भक्ति में कहते थे, अब तो हमें ज्ञान मिला है, पता चला है कि वो देवात्माएं हैं, लेकिन जो शिव है परमात्मा है वो तो परम पिता परमात्मा शिव, जिनका परिचय आज आप सबको मिला होगा, कल शायद आत्मा की पहचान मिली होगी, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ और इस सृष्टि मंच पर कैसे मैं रोल कर रही हूँ इस देह के द्वारा। आज आपको आपके पिता परमात्मा की पहचान मिली होगी, पता चला होगा कि वास्तव में शिव का परिवार कौन है, हम सब आत्माएं। लेकिन जो भक्ति के अंदर शिव परिवार दिखाया जाता है, उस परिवार के चित्र को सभी अपने सामने इमर्ज करेंगे, सबने देखा हुआ होगा, कईयों के घरों में भी वो पूजा के स्थान पर चित्र होगा, उसमें आप देखेंगे जब पूरा परिवार दिखाते हैं तो शंकर पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिक जी, ये सभी बैठे हुए एक परिवार के रूप में दिखाते हैं, और सामने शिवलिंग होता है और उनके वाहन साथ में दिखाए जाते हैं। विशेष ये बात मैं किस लिए सुना रही हूँ, बता रही हूँ आपको, कि उनके वाहन दिखाए हुए होते हैं, तो आप देखिए कितनी अपोजिट बात है कि जो वाहन दिखाए जाते हैं उनके, शिव का नंदी और पार्वती माँ देवी शक्ति मानी गई है, उसी को दुर्गा का रूप कहा गया है, वैष्णो कहा गया है, उसका वाहन शेर दिखाया हुआ है और गणेश जी का वाहन चूहा दिखाया हुआ है और कार्तिक का वाहन मोर दिखाया हुआ है। उधर जो शंकर जी का स्वरूप है उसमें आप देखेंगे गले में सर्प आदि दिखाया हुआ है। परिवार के अंदर ये सब भी उस परिवार में रहते हैं, साथ रहते हैं, और आप देखेंगे एक दूसरे से विरोधाभास है, एक दूसरे से बिल्कुल क्या है, सांप चूहे को छोड़ेगा, शेर नंदी को छोड़ेगा, लेकिन दृश्य कितना सुंदर बना हुआ है इस चित्र के अंदर, कि देखिए कि वहां पर मतलब शिव परिवार वो है, शिव का परिवार उसको कहेंगे कि जिन्होंने मन को भी जीता है, प्रकृति को भी जीता है, प्रकृति में ये सब जीव जंतु पशु पंछी सब आते हैं। अभी हम सुन रहे थे कि हमारी भारतीय संस्कृति में सनातन धर्म में सब चीजों का सम्मान मान और खाने पीने का ध्यान रखा जाता है। अभी आप देखेंगे जो सुना कि पशु पंछियों को दाने डाले जाते हैं, उनके लिए स्पेशल स्थान बनाए जाते हैं, गर्मी आती है तो परिंदों के लिए पानी पीने के लिए जगह जगह पर मिट्टी के बर्तन लगाए जाते हैं जिसके अंदर पानी भरा जाता है, ठंडा भी रहे और वो पंछी पिए, उनको जगह 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 टांगा जाता, मना इतना ध्यान रखा जाता है और छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को भी दाने डाले जाते हैं। ये सब बातें क्या सिद्ध करती है कि शिव परिवार अर्थात शिव परमात्मा की जो आत्माएं हैं, उन आत्माओं के अंदर ये सभी संस्कार इस समय भरे जाते हैं जिस समय शिव परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं। तो ये वही कलिकाल का समय चल रहा है जो भी आप सुन चुके हैं गीता दीदी द्वारा, कि अब कलयुग का अंत सत्ययुग के आदि का संधि काल चल रहा है। इस समय परम पिता परमात्मा स्वयं आकर के हम आत्माओं को फिर से सारी प्रकृति के पांच तत्वों को भी शुद्ध बनाने के लिए, उसके साथ हम आत्मा को भी शुद्ध बनाने के लिए स्वयं अपना संबंध अपने साथ जोड़कर, आत्मा का संबंध परमात्मा से जोड़कर, हम आत्मा को इतना शक्तिशाली बना रहे हैं कि अपनी संपूर्ण शक्तियां हमारे अंदर भर करके हम आत्माओं को सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम बना रहे हैं, जिससे कि सारी प्रकृति के जीव जंतु भी सब मर्यादा में आ जाएंगे। कोई भी किसी प्रकार की कोई हिंसा या दुख दर्द किसको नहीं देगा। जब मनुष्य आत्माएं किसी को दुख दर्द देने वाले नहीं, किसी के बारे में बुरा सोचने वाले नहीं, किसी के लिए गलत भाव और विचार रखने वाले नहीं, तो पूरी प्रकृति के अंदर वही प्रभाव फैलता है, वही प्रकंपन फैलते हैं, तो सतयुग आता है, अर्थात सतयुग बनता है, अर्थात राम राज्य होता है। बाकी वो राम राज्य नहीं जिसके लिए हमने सुना है कि यहाँ पर एक ककई के कारण पूरे राज्य की उथल पथल हो गई, लेकिन फिर भी देखिए उस राम राज्य के दृश्य में क्या दिखाया है कि फिर भी उस परिवार की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए महिलाओं ने ही सहयोग किया। एक महिला ने ही पूरे राज्य कारोबार में भूंचाल पैदा कर दिया, हलचल ला दी, और बाकी सब महिलाओं ने मिलकर के सहयोग दे करके उस राज्य परिवार की प्रतिष्ठा को बनाए रखा। उरुनाला अपना 14 वर्ष कैसे जीवन जिया, मांडवी ने अपना जीवन कैसे तपस्वी की तरह जिया, भरत कैसे कुटिया में रहे, मतलब उसमें भी क्या दिखाया है कि यहाँ राम जैसे विचारों और भावनाओं वाले लोग होंगे या उनके भाई बंधु होंगे, उन सब के अंदर ये शक्ति होगी कि इतनी बड़ी बात होने पर भी सबने सहन किया, लेकिन ककई को किसी ने भी धिक्कारा नहीं, किसी ने भी ये नहीं कहा कि इसको अलग कर दिया जाए, इसको बाहर निकाल दिया जाए, नहीं, वो भी उसी परिवार में रही, सब कुछ होता रहा। और वनवास से जब राम लौटे तो सबसे पहले किससे मिले, ककई से मिले, मंथरा से मिले। तो ये सब संस्कार इस समय भगवान ये, और उस समय राम राज्य की बात नहीं है, राम राज्य के बाद तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन राम राज्य से पहले ये सब होता है। तो ठीक है, वही समय चल रहा है कि अभी ये सब बातें हो रही हैं, लेकिन ये होते हुए भी कई घर, कई परिवार ऐसे हैं जो फिर भी भले वो घर एक व्यक्ति घर का कोई नेगेटिव होने के कारण या आसुरी प्रवृत्ति का होने के कारण परिवार को, घर को तोड़ने का काम करता है, लेकिन बाकी सब मिलकर के कैसे न कैसे करके उस परिवार को जोड़ के रखते हैं। तो ये शक्ति मिलती है राजयोग के द्वारा, जो आप दो दिन से बहुत अच्छी तरह से राजयोग के विषय में जान चुके हैं, तो मैं अब उसकी डिटेल नहीं करूंगी क्योंकि और भी बोलने वाले हैं, आप सब भी बहुत समय से बैठे सुन रहे हैं। अब हम थोड़ी देर के लिए बिल्कुल साइलेंस में चलते हैं, उस सच्ची शांति की, असीम लहरों के बीच में इमर्स करिए हम सभी इस विश्व ब्रह्मांड के बीच में, इस विश्व ग्लोब के अंदर, अपने भारत खंड में जिसकी प्राचीन संस्कृति को सारा विश्व गुणगान करता है, सारा विश्व अब अपनाने को तैयार है क्योंकि विश्व पिता स्वयं आ चुका है फिर से सब आत्माओं को पावन बनाने। और उस भारत खंड में हम सब बैठे हैं, उस आबू पर्वत पर, यहां पिता परमात्मा स्वयं अवतरित होकर इस पूरे भारत को पुनः सतयुग स्वर्ग बनाने आए हैं। और इस स्थान से, इस आबू पर्वत से उन पांडवों को तैयार कर रहे हैं, उन शक्तियों को तैयार कर रहे हैं जो सारे विश्व को पावन बनाने का कार्य कर रही है। चलिए कुछ क्षणों के लिए भूल जाइए इस देह को, इस देह की दुनिया को, अपने मन की संकल्प शक्ति से अपने आप को अपने संपूर्ण आत्मा के प्रकाश रूप को देखें, जो दोनों नेत्रों के बीच में त्रिकुटी के मध्य, मस्तक के मध्य विराजमान है। मैं वो शक्तिशाली आत्मा, पवित्र आत्मा, अपने आप को इस देह से अलग करते हुए अपनी सूक्ष्म उड़ान द्वारा इस अंतरिक्ष से ऊपर, आकाश तत्व से पार, यहां पर कोई आवाज नहीं है, कोई आकर्षण नहीं। मैं अपने लाइट स्वरूप द्वारा, अपने लाइट के सूक्ष्म शरीर को लेकर सूक्ष्म वतन की ओर जा रही हूं। यहां मेरे प्यारे पिता ब्रह्मा बाबा, हम सब आत्माओं का इंतजार कर रहे हैं कि मेरे सभी बच्चे बहुत जल्दी से जल्दी इस राजयोग की साधना और तपस्या से, शक्तिशाली वाइब्रेशन से पांच तत्वों को पावन बनाएं, अपने आप को पावन बनाएं, और इस देह से अलग होकर अपने प्यारे वतन, अपने सच्चे वतन परम धाम में चलने की तैयारी करें। अब इस दुख और दर्द की दुनिया से दूर मैं संपूर्ण शांति की दुनिया, प्रकाशमय दुनिया, यहां हम अपने अनादि स्वरूप में, अपने सतोगुणी स्वरूप में निवास करते हैं। हम सब वो दिव्य आत्माएं अपने पिता परमात्मा से, अपने अंदर उन दिव्य शक्तियों को भर रहे हैं, उन दिव्य शक्तियों रूपी शस्त्रों से मुझे अपनी आत्मा के हर विकर्म को, हर विकृति को भस्म करना है, उस एक पिता परमात्मा की याद, एक ही स्वरूप, जैसे मैं आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप हूं, वैसे मेरे पिता परमात्मा भी। जो ज्ञान, गुणों और शक्तियों के सागर हैं, लाइट हाउस हैं, उनकी संपूर्ण शक्तियां हमारे ऊपर बरस रही हैं। हम सब आत्माएं अपने अंदर उन शक्तियों को भरकर शिव शक्ति बनकर उस परम पिता परमात्मा के रहे हुए कार्य को पूरा करेंगे। सारे विश्व की आत्माओं को उस पिता से संबंध जोड़ना, उस पिता से खोई हुई शक्तियां प्राप्त करना और अपने आप को उस पिता परमात्मा शिव का योग्य बच्चा बनाकर उसकी योग्यताओं को धारण करके सच्चा योगी बनेंगे, सच्चा योगी बनाएंगे। जिस योगी की महिमा है कि जिसके सानिध्य में आने से सामने वाली आत्मा को परिवर्तन करने की शक्ति मिल जाती है, परिवर्तन करने का दृढ़ संकल्प आ जाता है, ऐसी तपस्या, ऐसी याद जो बहुत सहज और सरल है, सुगम है, केवल आत्मा की यात्रा है। हम सब यात्री अपने प्यारे पिता से शक्तियों को भरपूर कर उन्हें इस सृष्टि मंच की ओर अपने सूक्ष्म लोक में आ रहे हैं और अपने प्यारे पिता ब्रह्मा बाबा के संग सारे विश्व और ब्रह्मांड को अपनी शक्तियां देते हुए सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना करते हैं। सबका भला हो, सब सुख पाए, सबका भला हो, सब सुख पाए, सबका भला हो, सब सुख पाए। अभी हम पुनः इस देह में प्रवेश कर इस कर्म क्षेत्र पर पुनः कर्म योगी बन कर्म करेंगे।
दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमें मेडिटेशन बताया कि हमें किस तरीके से मेडिटेशन करना है। और अभी समय की सीमा को देखते हुए हम नेक्स्ट अपने गेस्ट ऑफ ऑनर को आमंत्रित करना चाहेंगे, श्रीमती राजबाला सिंह जी, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं फ्रॉम पश्चिम बिहार दिल्ली. शी इज गॉट वेरियस अवार्ड्स टू हर नेम. टू नेम अ फ्यू, फेस वुमेन्स अचीवमेंट अवार्ड इन 2023, मदर टेरेसा ह्यूमैनिटी अवार्ड, फेस भारत रत्ना अवार्ड एंड पीस एंड यूनिटी अवार्ड इन 2022. शी इज करंटली अ मेंबर ऑफ सोशल वेलफेयर बोर्ड AAP एंड अ मेंबर ऑफ इको रूट्स फाउंडेशन. वेलकम मैम.
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति. मंच पर आसीन गीता दीदी, मोहिनी दीदी, शील दीदी, आपको मेरा ओम शांति. और डॉक्टर कजारिया जी, एंड डॉक्टर ऋचा जी, आपको भी मेरा ओम शांति. आप सब ने अभी दीदी से भी और डॉक्टर साहब से भी सबसे बहुत कुछ सुना नारी शक्ति के बारे में. और अभी हम तीन दिन से यही हमारी क्लासेस भी चल रही है, सेशन चल रहा है कि नारी शक्ति क्या है. तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि नारी शक्ति के बारे में हमने बहुत कुछ सुना, लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि इसके पीछे नारी का जो पतन हो रहा है उसके पीछे किसका हाथ है? अगर आज हम ये देखें आज के दौर में कि पुरुषों को भी थोड़ा सा हमारा साथ देना चाहिए, अगर वो भी इसमें हमारे हमारे इस प्रोग्राम में या हमारे इस सेशन में जिस तरीके से हम नारी को आगे प्रमोट कर रहे हैं, कि तो पुरुषों को भी ये चीज होना चाहिए कि वो भी नारी के प्रति एक मर्यादा रख के नारी की इज्जत करना सीखें, जो कि हमारे समाज में आज लैक होता जा रहा है. ये कि हमारी मर्यादाओं को जो पुरुष हैं वो इतना महत्व नहीं दे रहे. तो दूसरा, मैं जैसे अभी रिसेंटली मुझे माइनॉरिटी कमीशन में एडवाइजरी कमेटी का मेंबर भी बनाया गया, तो मैंने देखा कि हमारी वहां पे जो फर्स्ट मीटिंग थी वहां पे सब लेडीज आई हुई थी. मेरे ख्याल में वहां पे 60-70 लेडीज थी. और उन सबकी मैंने लाइफ जब सुनी तो लगा कि हर औरत को कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जो समाज की जो भी समाज में हो रहा है उससे वो जूझ रही है, लेकिन वो आगे नहीं आके बोल नहीं पा रही समाज में. यहां तक कि कई लेडीज अपने घर में भी उनके साथ रेप हो रहा है वो भी नहीं बता पा रही. तो वहां पे जब हम इकट्ठे हुए तो जब उनकी प्रॉब्लम सुनी तो यही लगा कि हमें समाज में कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि हम उन लेडीज को कैसे बचाएं. तो मैंने जब यहां पे मैं ज्ञान सरोवर के इस प्रोग्राम में जब आई हूं तो मैंने यही देखा कि यही एक विश्वविद्यालय ब्रह्म कुमारी का ऐसा है कि जहां हमें आत्मज्ञान जो मिलता है. जब तक हमारे पास आत्मज्ञान नहीं है हमारा जीवन बदल ही नहीं सकता. ये इस विश्वविद्यालय की एक खास जो हम लोगों को एक देन है जो बाबा ने हमें ये दिया है, जो आत्मज्ञान. हम बहुत से कॉलेजेस में लोग पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि जी वो फलाने कॉलेज का स्टूडेंट है, उस कॉलेज का है, उस कॉलेज का है, तो उसके हिसाब से हम उसको मार्क देते हैं. तो मुझे लगता है कि जो ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय का जो पढ़ा हुआ बच्चा होगा उसको वो कभी फेल नहीं हो सकता अपनी लाइफ में. तो बाबा ने भी जब शुरू किया तो बाबा ने भी नारी को ही सबसे पहले लेके आए वो. और उन्होंने जो नारी को सम्मान दिया वो आपके सामने है. हमारी दीदी जितनी भी हैं, और मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली में बड़ी दीदी चक्रधारी दीदी जी को मिली थी तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उनके साथ जाके उनको कैसे बात करूं. और मुझे डर भी लग रहा था कि दीदी से आमना सामना होगा तो मैं कैसे फेस करूंगी. लेकिन जब दीदी का ओरा देखा मैंने और उनकी आवाज सुनी तो वही आवाज मेरी कानों में हमेशा रहती है कि बेटा। तो ये चीजें हमें यहां पे आके जो मिली है ना, ये हमें नहीं मिल सकती। मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे घर में भी मैंने बाबा जी का प्रकाश भी किया हुआ है, सुबह शाम पूरी मर्यादा के साथ करते हैं। लेकिन वहां पे भी ना मुझे जो चीज की कमी थी ना, मैंने बहुत सुबह, क्योंकि उसमें ये होता है कि आप सुबह पहले उठ के 4 बजे उठ के उठाते हैं, फिर रात को सुलाते हैं, वो पूरी मर्यादा से होता है। लेकिन वो आत्मज्ञान जो था ना, जो वो मुझे नहीं मिला, जो मन की शांति थी वो नहीं मिली, वो मुझे मिली यहां पे आके। मैं 2015 में बाबा के ज्ञान में आई, 16 में सॉरी। और दीदी मैं अपना इंसिडेंट बता सकती हूँ, अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि बाकी तो सब कुछ बहुत बता दिया सबने। तो आप सबको भी शॉक होगा कि 2016 में मेरे यंग बेटे की डेथ हो गई, ही वॉज हार्डली 30। और आप ये देखिए कि उस टाइम भी मैं सुबह उसको घर से जब छोड़ के गई तो मैं ट्रेन में थी और मैं गोल्डन टेम्पल जा रही थी गुरुद्वारे, उसी के लिए दुआ करने के लिए जा रही थी। और एक हफ्ते के बाद यही था कि उसकी सगाई की तैयारियां हो रही थी कि उसकी सगाई करनी है। रास्ते में पहुंची तो मुझे फोन आया मेरी मेड का कि मैडम, बेटे का नाम लेके, कि वो लगता है बाथरूम में ना गिर गए हैं, उनको बहुत तेज सांस की आवाज, सांस लेने की आवाज आ रही है। तो मैंने कहा अच्छा तुम दरवाजा तोड़ दो, कोई बात नहीं। अच्छा, उसने जैसे तैसे, बहुत लंबी स्टोरी है, किसी तरीके से फोन करके, और मैं ट्रेन में थी, लेकिन मैं इतना सोच नहीं सकती थी कि इस थोड़े से टाइम में ये ट्रेजेडी हो सकती है लाइफ में। उसके बाद फिर थोड़े टाइम के बाद मुझे एक डॉक्टर का फोन आता है, वो नॉन फैमिली डॉक्टर थे, कहते आप कहाँ पे हो। मैंने कहा मैं तो जा रही हूँ। कहते नहीं, आप ऐसे आप रास्ते में से आ जाओ, वापिस आ जाओ। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। जब मैं आई यहाँ पे तो हॉस्पिटल में तो मेला लगा हुआ था, और जब मैंने उसको देखा तो मैं अपने मुंह से उसको सांस देने लगी, और मैंने कहा कि ये तो जाग रहे, इसमें मुझे इसके सांस की आवाज आ रही है। तो डॉक्टर मुझे बोलता है कि नहीं, ये आपके अपने सांस की आवाज है, उसकी सांस नहीं है ये। लेकिन मुझे फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था, खैर उन्होंने मुझे पीछे किया। और उसके बाद फिर ये हो गया इंसिडेंट, तब मेरी भाभी आज मेरे सामने बैठी है, ये ज्ञान में थी उस टाइम, और मैं पागल सी हो गई थी। ये थोड़े दिन के बाद मेरे पास आई, खड़े हो जाओ एक मिनट। तो ये ज्ञान में थी, तो जब ये आई तो इन्होंने मुझे बोला कि ऐसे तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, आप मेरे साथ चलो। मैंने, इन्होंने मुझे 7 दिन का कोर्स करवाया, मैंने कोर्स किया। उसके बाद मेरे जो रोना धोना और जो मेरा पागलपन था ना, वो धीरे धीरे कम होता चला गया, क्योंकि पहले तो मैं ये समझती थी कि मेरा बेटा हमेशा के लिए चला गया। लेकिन जैसे ही मुझे दीदी ने सेंटर में 7 दिन की जो ट्रेनिंग दी, उन्होंने मुझे बताया कि वो तो शरीर है, वो तो अलग हो गया, लेकिन बेटा तो आपका अभी है, उसकी आत्मा तो है ना। तो वो दिन और आज का दिन मैं देखती हूँ कि मुझे, आप मुझे देख रहे हो ना। तो आज मैं उसी चीज को लेके चल रही हूँ कि वो मेरे साथ है, वो कहीं नहीं गया। अगर मैं ये चीज को नहीं जानती तो शायद मैं आज इस दुनिया में भी ना होती, और शायद मैं पागल हुई होती। तो जो ज्ञान इस विश्वविद्यालय से मिलता है या सेंटर में जाके जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो मैं समझती हूँ कि हमें यहाँ से, जितने भी ऑडियंस आज बैठी हुई है, सब ज्ञान में आना चाहते हैं, कुछ नए लोग भी हैं, तो आप प्लीज प्लीज, मैं कह रही हूँ कि आप इस ज्ञान में आइए और आपको स्वर्ग यहीं मिलेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ये एक ऐसा आश्रम है, ऐसी जगह है जहाँ पे आपको कुछ बोलना भी नहीं पड़ता, अपने आप आपके काम होते हैं। और उसके बाद आप देखिए कि मैं कभी सोशल वर्क मैंने नहीं किया, लेकिन बेटे के जाने के बाद मैं समाज में निकली, ये सब बाबा का आशीर्वाद है। इतने मुझे अवार्ड मिले हैं, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा। और हर फील्ड में मैंने काम किया, जहां भी मुझे मौका लगा मैंने ये नहीं देखा कि ये छोटा है या बड़ा है, और मैं करती चली गई। और आज उसका फल ये है कि बाबा ने मुझे अपनी स्टेज पे, मैं इसके लिए तो इस जन्म में भी नहीं ये उतार सकती, जो इज्जत मुझे बाबा ने आज बख्शी है यहाँ पे खड़ा करके बोलने के लिए। और थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी, चक्रधारी दीदी जी आपको भी ओम शांति। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और क्या बोलूँ, आप सबने बहुत कुछ बोल दिया है। तो नारी शक्ति तो है ही है, और मुझे लगता है कि नारी शक्ति अगर है तो फिर इसीलिए हमारी संस्कृति भी जिंदा है और जिंदा रहेगी। और हमें अपने परिवार में, सबसे पहले हमें अपने परिवार में ये चीज लानी है, उसके बाद हमें अपने आसपास के लोगों के बीच में लानी है, उसके बाद हम समाज में जाके ये सब काम कर सकते हैं। तो इन सब शब्दों से मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।
थैंक यू बहन, आपने बहुत अच्छा अपना अनुभव शेयर किया, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। और अभी मैं आमंत्रित करती हूँ राजयोगिनी बीके शील दीदी का, जो कि जोधपुर से हैं, सीनियर राजयोगा टीचर हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ वुमेन्स विंग, एंड आपने महारानी कॉलेज राजस्थान यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स किया है, उसमें सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। संस्था के संपर्क में 1965 में आए हैं और ईश्वरीय सेवाओं में अपना जीवन समर्पित किया है। दीदी जी का स्वागत है।
ओम शांति। परमपिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु, परमात्मा, शिव की प्रिय संतान, सम्मानित मंच, आदरणीय चक्रधारी दीदी जी, शारदा दीदी जी, सभा में उपस्थित सभी बहनें और भाई, दो दिन से परिवार के बारे में सुन रहे हैं। एक हफ्ते में 7 वार होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा वार है परिवार। अगर परिवार में सुख शांति नहीं है तो 7ों वार हमारे कैसे बीतते हैं, बहुत टेंशन में बीतते हैं। आज हम देखें तो हमारे परिवारों की स्थिति कैसी हो गई है। जैसा कि आदरणीय गीता दीदी जी ने बताया, एक समय ऐसा था जब भारत का हर नर नारायण, हर नारी लक्ष्मी थी। 33 करोड़ देवी देवताएं यहाँ थे। वो 33 करोड़ जो देवताएं थे, तो प्रश्न होता वो कहाँ गए, किधर गए। एक बहुत अच्छा देशभक्ति का गीत हम सब ने सुना है, तुम में ही कोई गौतम होगा, तुम में ही कोई होगा गांधी। तो वो देवी देवता कौन थे, हम ही थे। जब हमारे अंदर वो दिव्य गुण थे तो हम ही देवी देवता कहलाते थे, लेकिन जैसा हमने सुना द्वापर से हमारे अंदर विकृतियां आई, विकार आए, और धीरे धीरे आज हम इस कलयुग में पहुंच गए। एक समय ऐसा था जब एक ही चूल्हे पर कितने लोगों का खाना बनता था। गांव की एक लड़की पूरे गांव की लड़की मानी जाती थी, क्योंकि बारात दूसरे गांव से आती थी, क्योंकि वो सबकी बहन है, वो सबकी बेटी है। इतनी पवित्र भावना, पवित्र दृष्टि हमारे परिवारों में थी, वैल्यूज थी हमारे परिवारों के अंदर, सहनशीलता, समर्पणता, धैर्यता, सहानुभूति, सहयोग, ये वैल्यूज थी। आज इसका स्थान ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, वैर विरोध ने ले लिया। अब हम सबको इस संसार को इस हालत में हम लोगों ने ही पहुंचाया है, तो इसे हम सबको ही मिलकर के ठीक करना होगा। और शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत परिवार से होगी, क्योंकि परिवार समाज की इकाई है। और उस परिवार में सबसे महिला का जो रोल है वो मुख्य रोल होता है। हम देखें, हर पुरुष की सफलता के पीछे महिला का, माँ का हाथ होता है। गांधी जी की हिस्ट्री पढ़ते हैं, गांधी जी जब विदेश जा रहे थे तो उनकी माँ ने उनसे प्रतिज्ञा कराई थी, मांसाहार का सेवन नहीं करेंगे, शराब का सेवन नहीं करेंगे। शिवाजी को शिवाजी बनाने वाली उसकी माँ थी, तुलसीदास जी को तुलसीदास बनाने वाली उसकी पत्नी थी। हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपने बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे संस्कार दिए। बचपन में एक कहानी हम सब ने अपने अपने किताबों में पढ़ी है कि एक बार एक बच्चे को जब फांसी की सजा दी गई और उससे पूछा गया, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो उस बच्चे ने कहा कि मेरी माँ को बुलाओ। और माँ को बुलाया, माँ का नाक कान काट दिया। तो कहा, क्यों ऐसा किया तुमने? ये माँ थी जिसने मुझे अच्छी शिक्षा नहीं दी, ये कहानी हम सबने पढ़ी है। जब मैं पहली बार अपने स्कूल से पेंसिल चुरा के लाया तो माँ ने मुझे कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन किसी की दवा चुरा के लाया तो भी माँ ने कुछ नहीं कहा, बेच करके मिठाई खिला दी मेरे को। तो माँ है जो बच्चे को अच्छी तरह से शिक्षा देकर एक अच्छा नागरिक बना सकती है। एक और मिसाल, साउथ में श्रवण बेलगोल में बाहुबली जी का, कि मूर्ति जब बनानी थी उस मूर्ति को बनाने में मूर्तिकार के मन में लोभ आ गया और मंत्री चामुंडा राय से सौदेबाजी की और मुंह मांगा, सोना मांगा। अब सोने की पहली खेप लेकर जब मूर्तिकार घर पहुंचा और माँ को कहा, माँ देखो मैं कितना सारा सोना लेकर के आया हूँ, तो माँ ने ऐसा उद्बोधन दिया, ये तो विनाशी चीजें हैं, ये तुम्हारे साथ नहीं जाएंगी, ये धन दौलत तो सब यहाँ रह जाएगा। और उस माँ ने कर्म फिलोसफी समझाई कि धर्म और कर्म ही हमारे साथ चलता है। और माँ के उद्बोधन से मूर्तिकार के मन में लोभ की जो भावना थी, आसक्ति थी, वो निकल गई। और आज अगर आप वो मूर्ति देखेंगे तो विश्व की भव्य मूर्तियों में से वो एक है। उसमें जो दिव्यता है, पवित्रता है, उसके पीछे माँ के दिए हुए संस्कार हैं। अब हम देखें तो माताओं को कैसे अपने जीवन को पहले सशक्त बनाना होगा, उसमें मैं दो तीन बातें बताना चाहूंगी अपने अनुभव के आधार से। मैं एक पंजाबी परिवार को बिलोंग करती हूँ। 1962 में हमारे लौकिक पिता जो थे वो ड्रिंक करते थे, तामसिक भोजन था। हम छोटे छोटे थे, हमारी माँ हमको एक बात सिखाती थी कि तुम्हारे डैडी जब आएंगे दुकान से, होलसेल का बिजनेस कपड़े का था, तो तुम लोग जोर जोर से किताब पढ़ना। बच्चों को किताबों में एक बात पढ़ाई जाती है, शराब पीने से क्या हानियां होती हैं। ये माँ हमें सिखाती थी कि जोर जोर से पढ़ना ताकि आपके पिताजी के कान में कुछ बात पहुंचे और उनका परिवर्तन हो। उनका परिवर्तन हमारे किताब पढ़ने से तो नहीं हुआ, लेकिन ये जरूर मैं मानूंगी कि मेडिटेशन से 62-63 में उन्होंने जब ब्रह्मा कुमारी का मेडिटेशन का 7 डेज का कोर्स किया तो विद इन 7 डेज के अंदर अंदर उनके ड्रिंक, उनका तामसी खाना पीना सब समाप्त हो गया। तो ये क्रेडिट मैं ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय को ही दूंगी, ब्रह्मा कुमारी इसको दूंगी। और उस समय हमारे इस संस्था के संस्थापक पिता श्री ब्रह्मा बाबा भी साकार रूप में थे, उनकी पालना से ये परिवार और आगे बढ़ा, तो आध्यात्मिक शक्ति वो शक्ति है जिससे हम पहले अपने को सशक्त बना सकते हैं। इसमें विशेष रूप से हमको अपने खान पान की शुद्धि का विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि कहा जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन। इसके साथ साथ हमें धन की शुद्धि का भी बहुत ध्यान रखना होगा। कहते हैं कि चोरी का माल मोरी में चला जाता है। अगर गलत तरीके से पति ने धन कमाया या बच्चे ने धन कमाया तो पत्नी का और पति बच्चे के लिए या पति को वो माँ वो पत्नी बताए कि मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए, क्योंकि टेंशन वाला धन घर में भी टेंशन पैदा करता है। मुझे गुरु नानक जी की एक वृतांत शायद आप सबने सुना होगा। एक बार गुरु नानक जी एक गांव में गए, एक सेठ ने निमंत्रण दिया था प्रवचन करने का, लेकिन उन्होंने उस गांव में कुछ नहीं खाया। थोड़ी दूर आगे चलकर एक किसान के घर में उन्होंने सूखी रोटी खाई। जो सेठ साथ साथ चल रहा था उसको बहुत क्रोध आया, गुरु नानक जी को कुछ कुछ बोलने लगा। गुरु नानक जी ने कहा कि मुझे अपने घर से एक रोटी मंगा करके दो, और उसने रोटी मंगाई और किसान के घर से भी रोटी मंगाई। जब सेठ की रोटी को दबाया तो उसमें से खून निकला और किसान की रोटी में से दूध निकला। ये है धन की शुद्धि। तो धन भी हमारा शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। भोजन जो हम बनाएं वो भी शुद्धता से पवित्रता से बनाएं। इस बारे में बहुत सारी कहानियां दृष्टांत हमको हमारे शास्त्रों में भी मिलते हैं। हमारे पास बहुत सारे भाई बहन जो वर्तमान समय सेंटर्स पर आते हैं उसमें ज्यादातर माता पिता बच्चों की प्रॉब्लम लेकर आते हैं। एक बहन आई हमारे पास और कहा कि मेरा बच्चे को मुझे मेडिटेशन कराना है। बहुत टेंशन में थी। हमने उनको कहा पहले आप मेडिटेशन सीखो, फिर उसको मेडिटेशन कराया और भोजन के बारे में बताया। और आप आश्चर्य करेंगे कि पूरे परिवार में परिवर्तन हुआ। भोग लगाने का उनको सिस्टम बताया। उनके फादर है, उस बच्चे के फादर कहते हैं कि ये बच्चा इतना परिवर्तित हो गया, ये हमारे घर में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। अन्न की शुद्धि, धन की शुद्धि, और तीसरा जो संस्कृति में आता है वो है हमारी वेशभूषा कैसी होनी चाहिए। गीता बहन ने बहुत सुंदर बात बताई थी, देवियों की ड्रेस कैसी होती है। भले हम मॉडर्न हैं, अभी मदर्स डे पर हम लोगों ने एक जोधपुर में प्रोग्राम रखा। मदर्स डे पर एक सोशल वर्कर बहन हैं, नीलम मुंदड़ा, महेश्वरी परिवार की हैं, उनको बुलाया था। दो तीन और गेस्ट भी थे। उस बहन ने एक बहुत सुंदर अनुभव वेशभूषा का बताया कि जब मैंने पढ़ा, एक अखबार में न्यूज पढ़ी कि दुबई में सौंदर्य कंपटीशन हो रहा है, मेरी दिल हुई मैं भी इस कंपटीशन में भाग लूं। और वो बहन ने अपने परिवार वालों से परमिशन ली, लेकिन जब वहां गई तो उनको कहा कि मैं ड्रेस ऐसी वैसी नहीं पहनूंगी, जो हमारी राजस्थानी ड्रेस है साड़ी, उसी ड्रेस में ही मैं रहूंगी। और उसने अपना बहुत सुंदर अनुभव बताया कि मैं उसी ड्रेस में रही और कंपटीशन जीत करके आई। सब लोग मेरे को दुबई में पूछते थे, आप प्रिंसेस हैं क्या, आप बिल्कुल प्रिंसेस की तरह लग रही हैं। तो कोई कपड़े पहनने से मॉडर्न होने की बात नहीं है, आधुनिकता और आध्यात्मिकता दोनों का सामंजस्य करके हमको चलना होगा, तभी हम सशक्त बन सकेंगे और हमारा ये परिवार भी सशक्त बन सकेगा। राजस्थान का एक मारवाड़ी गीत है, उसको सुना करके मैं समाप्त करूंगी, जिसमें एक सास अपनी बहू से पूछती है कि तुम्हें क्या गहने चाहिए, क्या बनाए तुम्हारे लिए गहने। तो बहु बहुत सुंदर उत्तर देती है। बहु कहती है, सासू जी आप गहनों का क्या पूछती हो, मेरे गहने कौन कौन से हैं? सासू जी आप गहनों का क्या पूछती हो, मेरे ससुर घर के राजा हैं और मेरी सास रत्नों की भंडार है। मेरा जेठ बाजूबंद है और जेठानी उसकी जीप है। देवर हाथी दांत का चुड़ला है तो देवरानी उस चुड़ले की चीप है। ननद कासुमल की कांचली है तो नंदोई गज मोतियों का हार है। पुत्र घर का चांदना है तो पुत्र वधु दीपक की लो है। पुत्री हाथ की मुंदड़ी है तो जवाई उसका चंपे का फूल है। और पति सिर का सेवणा है तो मैं पति की सेजनहार हूँ। ये है हमारे गहने। ये उस बेटी को शिक्षा दी गई थी कि अपने परिवार को ही अपना गहना माने। जब हम अपने परिवार को गहना मानेंगे, ये परिवार, एक परिवार अच्छा बनेगा, दूसरा अच्छा बनेगा, तीसरा अच्छा बनेगा और ये भारत जो है स्वर्ग बन जाएगा। अभी हम लोग 15 दिवस मनाने जा रहे हैं, 30 अगस्त को राखी भी मनाने जा रहे हैं। हम सब ये शुभ संकल्प करेंगे कि हम अपने आप को इन विकारों के बंधनों से भी मुक्त करेंगे और साथ साथ सच्ची सच्ची राखी पवित्रता की बांध करके हरेक बहन अपने भाई से ये प्रतिज्ञा करेगी, जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि हरेक बहन को आप बहन की दृष्टि से देखेंगे तो ये भारत स्वर्ग बन जाएगा और गांधी जी का सपना राम राज्य साकार हो जाएगा। ओम शांति।
आदरणीय दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस संसार में हम कहते हैं कि सबसे बड़ी संपत्ति है बुद्धि, सबसे अच्छा हथियार है धैर्य, सबसे अच्छी सुरक्षा है विश्वास, सबसे बढ़िया दवा है खुशी। आश्चर्य की बात है कि ये सब निशुल्क है और आप सभी को यहाँ ये सब निशुल्क मिल रहा है। तो हमारी दीदियों का और सीनियर टीचर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सेशन के एंड में अब हम आ गए हैं और आदरणीय चक्रधारी दीदी जी का, शारदा दीदी जी का, रानी दीदी जी का और मेरे सभी सीनियर टीचर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें ये मंच प्रदान किया उन्होंने। और थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। आदरणीय चक्रधारी दीदी जी को मैं मंच पे आमंत्रित करती हूँ कि वो मेहमानों का स्वागत करें और उनको शॉल और सभी से स्वागत करें और गिफ्ट्स दें। सभी तालियां बजाएंगे। सभी बजाते रहें और सभी का गिरधारी दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मैं डॉक्टर सविता दीदी जी को आमंत्रित करूंगी, वो कुछ अनाउंसमेंट करेंगे। और सभी भाई बहन योग करके ही यहाँ से जाएंगे, सभी बैठे रहिए।
बदलेंगे तस्वीर विश्व की, परम पिता शिव की संतान, घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। लेंगे तस्वीर विश्व की, परम पिता शिव की संतान, घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान।